आज जादूगर ध्यान ज्ञानोदय की एकल कक्षा के बाद मरे दोपहर के भोजन के लिए भोजन कक्ष में गए, फिर छात्रावास भवन में लौट आए, अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गए और अकेले ध्यान करने की कोशिश की। इस दुनिया में योद्धा योद्धा आभा की खेती करते हैं और जादूगर जादुई शक्ति की खेती करते हैं। जादुई शक्ति की खेती के लिए ध्यान आवश्यक विधि है। ध्यान के माध्यम से जादूगर अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हैं, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाते हैं और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग स्वर्ग और पृथ्वी के बीच यात्रा करने वाले जादुई कणों को पकड़ने के लिए करते हैं। उन्हें आध्यात्मिक शक्ति के साथ संयोजित करने के लिए अपने शरीर में खींचते हैं। इस प्रकार जादुई शक्ति को जन्म देते हैं। सिद्धांत स्थापित हो गया और व्यवहार शुरू हो गया। मरे ने अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठे हुए लगातार ध्यान मंत्र का पाठ किया और लिंडन बिल के मार्गदर्शन का पालन करते हुए ध्यान विधि का संचालन करना शुरू कर दिया। लेकिन 3 बार ध्यान विधि का पाठ करने के बाद भी उन्हें कक्षा में समान उत्साह का अनुभव नहीं हुआ। जहां तक तथाकथित आध्यात्मिक शक्ति का सवाल है, उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कुछ ही देर बाद मरे को थोड़ा थकान महसूस हुई। वह बिस्तर पर पीछे की ओर गिर पड़ा। उसने अपना कंबल ऊपर खींच लिया और गहरी नींद में सो गया। लेकिन उसके सो जाने के कुछ ही देर बाद हवा में से एक अदृश्य धूसर कण प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे मरे के सिर में चला गया। इस समय मरे को एक अजीब सपना आ रहा था। उसने सपना देखा कि उसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी और वह 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, दसियों हजार मीटर दूर आसमान में उड़ता हुआ, बादलों को पार करता हुआ और वायुमंडल को तोड़ता हुआ बाहर निकल गया। और वह उड़ता रहा, पृथ्वी उसकी आंखों के सामने सिकुड़ती रही जब तक कि वह गायब नहीं हो गई। एक धुंधले भूरे क्षेत्र से गुजरते हुए उसका पूरा शरीर भूरे रंग की एक परत से ब्रश किया हुआ लग रहा था और वह खुद भी धुंधला भूरा हो गया। लेकिन वह फिर भी नहीं रुका, वह बस उड़ता रहा। अचानक पैरों के जोर से चलने पर उसे हवा में गिरने का एहसास हुआ और मरे ग्रीन तुरंत नींद से जाग गया। अरे, मुझे एक बुरा सपना आया। अपने आसपास के जाने पहचाने फर्नीचर को देखते हुए मरे, जो अब जाग चुका था, को एहसास हुआ कि उसने एक बुरा सपना देखा था। उसने ध्यान से उसे याद करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसे बुरे सपने की विषय वस्तु बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। बस इतना याद था कि वह उड़ रहा था और वहां एक घना धूसरपन था। जम्हाई लेते हुए वह बिस्तर से बाहर निकला, अपने अंगों को फैलाया और हिलाया। मरे ग्रीन ने पाया कि वह अच्छी तरह से सोया था। वह ऊर्जावान महसूस कर रहा था, बिल्कुल भी अपने सामान्य नींद वाले स्वभाव जैसा नहीं। लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खिड़की से बाहर देखने पर पता चला कि सूरज पश्चिम में डूब रहा था। ये जबकि इतनी देर तक चली, मैं जाग गया और तब तक अंधेरा हो चुका था। .. जादूगर ध्यान ज्ञानोदय, जादू का इतिहास, जादुई पौधों और जानवरों की बुनियादी समझ, जादुई वस्तुओं की सराहना, जादू शिष्टाचार और मंत्र। ये मूल पाठ्यक्रम के 5 पाठ्यक्रम थे, प्रतिदिन 1, प्रति सप्ताह 5, सभी सुबह के समय निर्धारित थे, सप्ताहांत छुट्टी के साथ। जादू का इतिहास बहुत पुराना और गहरा है। 10,000 साल पहले लोगों ने जादू के संपर्क में आना और उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन उस समय जादू अव्यवस्थित और बेहद अव्यवस्थित था। ये कक्षा ध्यान कक्षा से भिन्न थी, जिसमें केवल 20 छात्र थे। यह एक बड़ा व्याख्यान था, जिसमें सैकड़ों छात्र एक बड़े कक्षा कक्ष में एक साथ बैठे थे। मंच पर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा जादू शिक्षक उत्साहपूर्ण भाव से जादू के विकास के इतिहास की व्याख्या करते हुए वाक्पटुता से बोल रहा था। मरे ग्रीन को इस कोर्स में बहुत दिलचस्पी थी। आखिरकार ये दुनिया उनकी पिछली दुनिया से अलग थी, जहां बहुत सारा ज्ञान ऑनलाइन पाया जा सकता था। मूल, संशोधित, जादुई रूप से परिवर्तित, ऑडियो संस्करण आदि सभी प्रकार के संस्करण उपलब्ध थे। इस दुनिया में ज्ञान बहुत महंगा है, खासकर जादुई ज्ञान। हर ज्ञान की अपनी कीमत होती है, इसलिए इस दुनिया में बहुत सारे ज्ञान पर एकाधिकार है। इसलिए मैजिक हिस्ट्री क्लास में भी कोई पाठ्य पुस्तक नहीं थी, सारी सामग्री शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से दी जाती थी। छात्रों को नोट्स लेने की अनुमति थी, लेकिन सामग्री को फैलाने की नहीं, अन्यथा अकादमी को ज्ञान लीक करने वाले छात्रों को दंडित करने का अधिकार होगा। जादू के इतिहास के वर्तमान शोधकर्ता जादू के विकास के इतिहास को इसकी प्रगति के अनुसार 3 अवधियों में विभाजित करते हैं। पहली अवधि प्राचीन रक्त जादू युग है, जो लगभग 10,000 साल पहले की है। दूसरा है प्राचीन अराजक जादू युग, 10,000 साल पहले से लेकर ईश्वर रहस्योद्घाटन कैलेंडर के पहले वर्ष तक। अंत में वर्तमान तत्व जादू युग है। अब मैं जो समझाने जा रहा हूं वह प्राचीन रक्त जादू युग है। जैसा कि पुराने जादू शिक्षक ने समझाया था, मरे ग्रीन ने धीरे धीरे जादू के विकास और सभ्यता की प्रगति के इतिहास को समझा। हालांकि वह इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकता था, लेकिन पुराने जादू शिक्षक के संक्षिप्त विवरणों के माध्यम से वह प्राचीन काल की बर्बरता और रक्तपात की झलक पा सकता था। जादू के उदय के समय लोगों के पास न तो कोई ध्यान विधि थी, न ही उन्हें मार्गदर्शन देने वाले कोई शिक्षक। सब कुछ उनकी अपनी खोजबीन से ही पता चला। प्रकृति के चमत्कारिक काम पर भरोसा करते हुए स्वाभाविक रूप से जागृत महाक्षमता वाले उपयोगकर्ता पैदा हुए। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली थे, अन्य बाद में जागे, और कुछ दुर्लभ स्वर्गीय खजाने का उपभोग करके जागे, लेकिन उनकी शक्ति और आत्मा सामान्य लोगों से कहीं अधिक थी, यहां तक कि वे तत्वों को नियंत्रित करने में भी सक्षम थे। इन महाशक्तियों वाले उपयोगकर्ताओं को ईश्वर का दूत कहा जाता था। ईश्वर के दूत के साथ ईश्वर के दूत का अध्ययन करने वाले लोग सामने आए। खूनी और क्रूर शोध की अवधि के बाद रक्त और मांस में हेरफेर करने वाले जादूगर ऐतिहासिक मंच पर चढ़ गए। प्राचीन रक्त जादू युग पर हावी हो गए। प्राचीन अराजक जादू युग खिलते फूलों और परस्पर विरोधी विचारधाराओं का समय था, जबकि ईश्वर रहस्योद्घाटन कैलेंडर का पहला वर्ष वह था जब वर्तमान रूढ़िवादी ध्यान पद्धति अस्तित्व में आई। जब कक्षा की विषय वस्तु में कोई रुचि नहीं होती तो समय वर्षों की तरह बीतता है, अगर रुचि होती है तो ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से उसमें डूबे हुए हैं। मरे ग्रीन को ऐसा महसूस हुआ मानो वे अपने बचपन में लौट आए हैं, पहली बार एक पौराणिक कहानी सुन रहे हैं, पूरी तरह से डूबे हुए। डिंग डोंग, ठीक है, मैं आज यहीं रुकता हूँ, हम अगली बार जारी रखेंगे। कक्षा समाप्त। विद्यार्थियों, सफेद बालों वाला शिक्षक जो जोर से और ऊंची आवाज में बोल रहा था, उसे कक्षा को आगे बढ़ाने की आदत नहीं थी। जैसे ही उसने कक्षा समाप्त होने का आह्वान किया, वह बिना पीछे देखे कक्षा से बाहर चला गया, इससे पहले कि मरे ग्रीन कोई प्रतिक्रिया दे पाता। वास्तव में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी यदि आप कक्षा को थोड़ा बढ़ा दें, मरे ग्रीन ने धीरे से बुदबुदाया, अपनी नोटबुक उठाई, धीरे से उठे और कक्षा से बाहर चले गए। छात्र मरे, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। जैसे ही मरे ग्रीन कक्षा से बाहर निकले, अचानक उनके पीछे से एक आवाज आई जो उन्हें बुला रही थी। आवाज सुनकर मरे ग्रीन रुक गए और अपना सिर घुमाकर लिवेई एलिस की ओर देखने लगे जिसने उन्हें बुलाया था। नमस्ते छात्र लिवेई, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आपको कुछ चाहिए? लिवेई एलिस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह इस तरह है, इस शुक्रवार शाम 7 बजे मैं एक सहपाठी भोज की मेजबानी करने की योजना बना रहा हूँ। पता छात्र सेवा क्षेत्र में रोज मैनर है, यदि आप उपलब्ध हैं तो मैं आपको इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। भोज और शिकार कुलीन सामाजिक मेलजोल के दो मुख्य तरीके थे। लिवेई एलिस के निमंत्रण का सामना करते हुए मरे ग्रीन ने तुरंत एक महान मुस्कान दिखाई और सहमति में सिर हिलाया। हाँ, बेशक मैं उपलब्ध हूँ, आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मरे ग्रीन का सकारात्मक जवाब पाकर लिवेई एलिस मुस्कुराने लगी और जल्दी से मरे ग्रीन के पास चली गई। चलते चलते दोनों बातें करने लगे। छात्र मरे, क्या आप मुझे अपना कमरा नंबर बता सकते हैं, फिर मैं किसी को आपके लिए भोज का निमंत्रण भेजने की व्यवस्था कर सकता हूँ। जरूर, मेरा कमरा नंबर है। दोनों साथ साथ चले, खाने के लिए डाइनिंग हॉल में गए और फिर डॉर्मेट्री क्षेत्र में लौट आए। मरे ग्रीन ने देखा कि लिवेई एलिस डॉर्मेट्री बिल्डिंग में नहीं बल्कि आसपास के अलग अलग विला में रहती थी। इन दो मंजिला विला में नौकरों को रखा जा सकता था, खाना पकाने और कपड़े धोने की सुविधा थी और इनमें निजी जादू अनुसंधान कक्ष, ध्यान कक्ष और तहखाने थे। रहने का माहौल और शांति छात्रावास भवन की तुलना में बहुत बेहतर थी, हालांकि कीमत भी बहुत अधिक थी। अध्ययन निधि के लिए काउंटेस की विशेष स्वीकृति के साथ मरे ग्रीन एक विला में रहने का खर्च उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी विला का चयन नहीं किया था क्योंकि उन्हें अभी इसकी आवश्यकता नहीं थी। अपने छात्रावास में वापस आकर मरे ग्रीन अधीरता से अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गए, अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप ध्यान विधि का पाठ किया। वह ध्यान की अवस्था में प्रवेश करना चाहते थे। उन्होंने आज अभी तक ध्यान नहीं किया था और उनकी ऊर्जा और शारीरिक शक्ति अपने चरम पर थी, लेकिन शायद किसी गुरु के मार्गदर्शन के अभाव के कारण मरे ग्रीन को अपने शरीर में हल्की बेचैनी के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। 1 घंटे के प्रयास के बाद भी स्वयं ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने में असमर्थ मरे ग्रीन को कुछ निराशा महसूस हुई। उन्होंने अपनी आंखें खोली तथा अपने शरीर को शांत करते हुए सांस को नियंत्रित करने में कुछ समय लगाया। ये ध्यान विधि वास्तव में अद्भुत है, यह मेरे दिमाग में मजबूती से बसा हुआ है, लेकिन मैं इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकता और जब मैं लिखने की कोशिश करता हूं तो मैं अक्षर भूल जाता हूं। अन्यथा मैं ये सत्यापित कर सकता हूं कि मैंने अपनी ध्यान विधि को गलत तरीके से याद किया है या नहीं। मरे ग्रीन ने एक कड़वी मुस्कान दी, आह भरी और फिर धीरे से खुद को सांत्वना दी, ये ठीक है, ये केवल दूसरा दिन है। अधिकांश लोगों को अपने आप ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने में लगभग 1 महीने का समय लगता है, अभी भी बहुत समय है। शायद खुद को आश्वस्त करने के बाद आराम से बैठे मरे ग्रीन को थोड़ा थकान महसूस हुई। उसने फिर से अपनी आंखें बंद की, बिस्तर पर वापस लेट गया और जल्द ही सो गया। जब मरे ग्रीन ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि सूरज एक बार फिर अस्त होने की तैयारी कर रहा था। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह, क्या जीवन ऐसे ही जिया जाता है? कॉलेज के छात्र की तरह पतनशील विश्वविद्यालय जीवन नहीं, कल मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी, मैं इस तरह सोता नहीं रह सकता। अपनी झपकी से जागते हुए मरे ग्रीन ने मौन प्रतिज्ञा की, जल्दी से उठे, खुद को साफ किया और कैफेटेरिया में खाने के लिए छात्रावास से बाहर चले गए। कैफेटेरिया में कुछ छात्र भी भोजन कर रहे थे और उन्होंने कुछ परिचित चेहरे देखे जो उनके ध्यान वर्ग के सहपाठी थे। कुछ ने विनम्रता से मरे ग्रीन का अभिवादन किया और मरे ग्रीन के जवाब में सिर हिलाने के बाद वह ऑर्डर करने के लिए कैफेटेरिया काउंटर पर चले गए। नमस्ते, मुझे 2 हनी फ्राइड पोर्क चॉप और 1 गिलास अंगूर का जूस चाहिए। धन्यवाद। 2 पोर्क चॉप 60 तांबे के सिक्के हैं, अंगूर का रस 20 तांबे के सिक्के हैं, कुल मिलाकर 80 तांबे के सिक्के हैं। कीमत बाहर की तुलना में बहुत अधिक थी, लेकिन निश्चित रूप से उत्तरी क्षेत्र के मुख्य शहर में, विशेष रूप से एलिस अकादमी के मुख्य क्षेत्र में, ये कीमत अभी भी उचित थी। मरे ग्रीन ने अपना छात्र कार्ड निकाला, काउंटर पर मैजिक एरे पर उसे स्वाइप किया, उपभोग रिकॉर्ड छोड़ा, फिर अपनी ट्रे लेकर एक खाली सीट ढूंढी। एक छोटा सा छात्र कार्ड 10 स्वर्ण सिक्कों के बराबर होता था क्योंकि यह एलिस अकादमी के पूरे मैजिक एरे से जुड़ सकता था। एलिस अकादमी के पास एक विशाल समग्र मैजिक एरे था। इस छात्र कार्ड के बिना किसी को छात्रावास में लौटने या कक्षाओं में प्रवेश करने के लिए पंजीकरण करना पड़ता था और यहां तक कि कैफेटेरिया में खाने के लिए भी नकदी ले जाना पड़ता था। स्कूल में पहले से ही पैसा जमा करके विद्यार्थी अपने विद्यार्थी कार्ड का उपयोग पूरे स्कूल में कहीं भी कर सकते हैं, जहां भी उन्हें पैसे की आवश्यकता हो। ये वास्तविक दुनिया में कार्ड भुगतान के समान है। इससे मरे ग्रीन की आंखें सचमुच खुल गईं। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यद्यपि इस दुनिया में तकनीकी बुद्धिमत्ता का अभाव था, फिर भी जादू का विकास उतना ही प्रभावशाली था। बेशक ये केवल एलिस अकादमी के भीतर ही था, अकादमी के बाहर अकादमी के मैजिक एरे कवरेज के बिना छात्र कार्ड का मूल्य केवल उस सामग्री के बराबर था जिससे वह बना था। मरे ग्रीन ने अपना चाकू और कांटा उठाया, चाकू से कुशलता से पोर्क चॉप काटा और कांटे से शानदार तरीके से खाया। लेकिन तभी एक लंबा व्यक्ति उसके पास आया। उस व्यक्ति के आने का आभास होने पर मरे ग्रीन ने ऊपर देखा। उसने देखा कि एक लंबा सुंदर आदमी स्थिर भाव से उसके सामने खड़ा है। उस आदमी का चेहरा देखकर एक नाम दिमाग में आया, यह उसके ध्यान वर्ग का एक सहपाठी था जिसका नाम शायद। नमस्ते मरे ग्रीन, मैं निक ब्राउन हूँ, ब्राउन परिवार अर्ल शीर्षक। निक ब्राउन लंबा था, हालांकि वह केवल 16 वर्ष का था। वह मरे ग्रीन से एक सिर लंबा था, जो उसके बड़े भाई राइन ग्रीन के बराबर था। वह एक योद्धा के लिए उत्कृष्ट सामग्री था, इसलिए मरे ग्रीन को आश्चर्य हुआ कि उसने जादूगर बनना क्यों चुना। नमस्ते निक, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? मरे ग्रीन ने अपना चाकू और कांटा नीचे रख दिया, एक सफेद नैपकिन से अपने मुंह के कोने से बची हुई सॉस को पोंछा और खड़े होकर निक ब्राउन को औपचारिक रूप से जवाब दिया। क्या मैं आपके सामने वाली खाली सीट पर बैठ सकता हूँ? बिल्कुल, दोनों साथ बैठ गए। निक ब्राउन की चमकीली आंखें मरे ग्रीन की हल्की नीली आंखों पर टिक गईं और उसने धीरे से पूछा, क्या आपकी माँ कैंपबेल परिवार की सदस्य हैं? हाँ वह है, मेरी माँ पेनी कैंपबेल है, जो वर्तमान कैंपबेल मार्क्विस की तीसरी बेटी है। हालांकि मरे ग्रीन अभी भी निक ब्राउन के उसे खोजने के इरादे के बारे में थोड़ा उलझन में था, लेकिन पूछताछ का सामना करने पर उसने सच्चाई से जवाब दिया। निक ब्राउन ने एक पुष्ट उत्तर प्राप्त करने पर अचानक उत्साहित होकर कहा, ओह क्या संयोग है, मेरी दादी वर्तमान कैंपबेल मार्क्विस की सबसे छोटी चाची हैं, हम रिश्तेदार हैं, इस हिसाब से मैं तुम्हारा परमाता चाचा हो सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह WTF। अचानक सामने आए इस साथी का, जो स्वयं भी एक बुजुर्ग था, सामना करते हुए मरे ग्रीन को अचानक महसूस हुआ कि उसके सामने रखा पोर्क चॉप अब स्वादिष्ट नहीं रह गया था। हालांकि अगर इस आधार पर गणना की जाए कि उनकी दादी उनके नाना की सबसे छोटी चाची थी, तो लंबे तगड़े निक ब्राउन, जो उनकी ही उम्र के थे, वास्तव में पुरानी पीढ़ी के थे। धत्तेरी की चाचा, हाहाहा भतीजे मरे, तुम्हें मुझे चाचा कहने की जरूरत नहीं है, चलो अपनी शर्तों पर टिके रहते हैं, हम सहपाठी हैं, हम भाई हैं, तुम मुझे सिर्फ भाई कह सकते हो या सिर्फ निक भी। निक ब्राउन की मूल रूप से स्थिर अभिव्यक्ति चिकना और चालाक हो गई, जिससे मरे ग्रीन की कनपटी धड़क उठी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन फिर चुपचाप उसे ढीला कर दिया। निक ब्राउन के लंबे शरीर को देखते हुए उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतना ताकतवर और ईमानदार दिखने वाला व्यक्ति इस तरह का व्यक्ति हो सकता है। कुलीन परिवारों की ऐतिहासिक वंशावली लंबी होती है, परिवार जितना बड़ा और पुराना होता है, उनकी रक्तरेखाएं उतनी ही मिश्रित होती हैं। पिछली दुनिया में यूरोप की तरह सभी देशों के लगभग सभी राजा रिश्तेदार थे। अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं था और रक्तरेखा समाप्त होने वाली थी, तो वे राजा बनने के लिए किसी दूसरे देश के राजकुमार को भी उधार ले सकते थे, और यहां भी यह कोई अपवाद नहीं था। आप कभी नहीं जानते कि आपके सामने कौन व्यक्ति है। आखिरकार एक लड़की को पसंद करना एक सूक्ष्म भावना थी, केवल ये पता लगाने के लिए कि वह आपकी परदादी थी। ग्रीन परिवार उत्तरी क्षेत्र में एक सुदूर उभरता हुआ कुलीन परिवार था। कई पीढ़ियों से उन्होंने केवल स्थानीय स्तर पर ही विवाह किया था और कुलीन वर्ग का कोई खास विकास नहीं किया था। हालांकि वर्तमान ग्रीन अर्ल ने पहले कैंपबेल मार्क्विस की बेटी से विवाह किया, फिर एक युद्ध में प्रसिद्धि प्राप्त की और उसे अर्ल की उपाधि दी गई, जिससे वह अचानक अत्यधिक लोकप्रिय हो गया। इसलिए पेनी कैंपबेल के बेटे और कैंपबेल मार्क्विस के पोते के रूप में दोनों ग्रीन भाई अपनी मां के वंश के आधार पर तुरंत उत्तरी क्षेत्र के कुलीन वंश में शामिल हो गए। इस्कुलीन वंश के समूह में शामिल होने के अपने फायदे और नुकसान थे। इसका फायदा ये था कि हर जगह कुलीन रिश्तेदार होते थे और रिश्तेदारों के होने से चीजें आसान हो जाती थीं, जो कि दुनिया भर में एक कठोर सच्चाई थी। विशेष रूप से ग्रीन परिवार जैसे उभरते हुए कुलीन परिवार के लिए कुलीन वंश चक्र में प्रवेश करने के बाद माल बेचना, रणनीतिक सामग्री खरीदना और यहां तक कि युद्ध के लिए पैसे उधार लेना बहुत आसान हो गया, वास्तव में एक पत्थर से कई पक्षियों को मारना। नुकसान भी बहुत स्पष्ट था। वर्तमान में मरे ग्रीन के लिए सबसे तात्कालिक बात यह थी कि वह निम्न पीढ़ी का था। इससे मरे ग्रीन नामक शांत और सुंदर व्यक्ति लगभग अपना संयम खो बैठा। सहपाठी, सहकर्मी, रिश्तेदार और समान सामाजिक स्थितियां, इन परिस्थितियों के कारण तथा पीढ़ियों के बीच थोड़े अजीब से अंतर के कारण दोनों वास्तव में बहुत करीब आ गए। मरे ग्रीन ने निक ब्राउन से बात करते हुए अपना स्टेक खाया। स्टेक के दो टुकड़े खाने के बाद मरे ग्रीन को अचानक एहसास हुआ कि आज उसे पेट भरा होने का एहसास बहुत ज्यादा नहीं था। आमतौर पर दो स्टेक खाने से उसका पेट 80% भर जाता था, लेकिन आज उसका पेट सिर्फ 70% भरा था। मेरी भूख बढ़ गई है, मुझे उम्मीद है कि मैं मोटा नहीं हो जाऊंगा। शायद नहीं, 16 साल की उम्र में मैं अभी भी बढ़ रहा हूं, इसलिए बढ़ी हुई भूख सामान्य है। ये सोचते हुए मरे ग्रीन ने भी अपनी प्लेट से सजावटी सब्जियां मुंह में ठूंस ली, फिर अंगूर का जूस गटक कर अपना खाना खत्म कर लिया। मैं ज्यादा चूजी नहीं हो सकता, मुझे विटामिन की जरूरत है। ओह मरे, क्या तुम आज रात फ्री हो? क्यों ना हम साथ में सर्विस एरिया देखने चलें? मरे ग्रीन को खाना खत्म करते देख निक ब्राउन ने अपनी प्लेट में बचे हुए भोजन की ओर देखा, लेकिन उसने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया, बल्कि उत्साहपूर्वक अपने मित्र को छात्र सेवा क्षेत्र में आमंत्रित किया। कोई समस्या नहीं, मैंने सुना है कि सेवा क्षेत्र विशेष रूप से जीवंत है, मैं लंबे समय से इसे देखना चाहता था। निक ब्राउन के निमंत्रण का सामना करते हुए मरे ग्रीन, जो छात्र सेवा क्षेत्र में भी काफी रुचि रखते थे, तुरंत सहमत हो गए और वे एक साथ छात्र सेवा क्षेत्र की ओर चल पड़े। संपूर्ण एलिस अकादमी को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें चरित्र आकार में व्यवस्थित किया गया है, मैजिक अकादमी, योद्धा अकादमी और छात्र सेवा क्षेत्र। मैजिक अकादमी और वॉरियर अकादमी चरित्र के दो निचले हिस्सों में स्थित हैं। ये दो हिस्से सरल हैं, वे शिक्षण क्षेत्र और छात्र शिक्षक छात्रावास हैं। हालांकि छात्र सेवा क्षेत्र अधिक जटिल है, इसे शिक्षकों और छात्रों के लिए एक बड़े शॉपिंग और मनोरंजन क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसमें रेस्तरां, दर्जी की दुकानें, हथियार की दुकानें, जादू की औषधि की दुकानें, बार शामिल हैं। मूलतः आपकी कल्पना की हर जरूरत यहां पूरी की जा सकती है, ये व्यवहारिक रूप से एक लघु शहर है। चलते समय दोनों ने देखा कि मैजिक अकादमी के कई छात्र भी सेवा क्षेत्र की ओर जा रहे थे, हालांकि उनमें से अधिकांश नए नामांकित छात्र थे। ये समझ में आता है, शाम जादूगर के ध्यान के लिए सबसे अच्छा समय था और केवल नए छात्रों के पास सेवा क्षेत्र को ब्राउज करने का समय होगा। इसके अलावा मैजिक अकादमी बहुत शांत थी, इसलिए युवा ऊर्जावान छात्र एकांत को कैसे सहन कर सकते थे और मैजिक अकादमी में बंद रह सकते थे। छात्र सेवा क्षेत्र में प्रवेश करने पर उन्होंने एक शॉपिंग स्ट्रीट देखी जिसके दोनों ओर दुकानें लगी हुई थीं। छात्रों के समूह सड़क पर खरीदारी और खेल रहे थे और कई छात्रों ने खुले क्षेत्रों में स्टॉल लगाकर सामान बेचा था। आओ सब आओ, कायास पर्वत से शिकार किया गया एक लेवल 2 गेल वुल्फ। इसके नुकीले दांत, इसके तीखे पंजे देखें, कलाकृतियां बनाने के लिए जरूरी। इसका फर अविश्वसनीय रूप से सख्त है, इसे सिल दो और यह कवच का एक टुकड़ा बन जाएगा। इसकी मृत्यु का समय 3 घंटे से भी कम समय पहले था। मांस एकदम ताजा है, अपने शरीर को मजबूत करने के लिए इसे खाओ। एक लंबा वरिष्ठ व्यक्ति जो योद्धा की तरह कवच पहने हुए था चिल्ला रहा था, जबकि उसके बगल में रेंजर की पोशाक पहने एक साथी कमर में एक हाथ वाली तलवार और कपड़ों पर खून के धब्बे के साथ ग्राहकों का अभिवादन कर रहा था। उनके सामने एक गेल वुल्फ का संसाधित शव पड़ा था जो भैंस के आकार का था और उसके चारों ओर कई सहपाठी खड़े थे। सहपाठी, भेड़िए के नुकीले दांत कितने हैं? चमड़े का कवच पहने और पीठ पर लंबा धनुष लटकाए एक सहपाठी ने विक्रेता से कीमत पूछने से पहले नुकीले दांतों की सावधानीपूर्वक जांच की। दांत 1 सोने का सिक्का है, नुकीले दांत 50 चांदी के सिक्के हैं। ठीक है, 1 नुकीला दांत और 2 नुकीले दांत। लंबे धनुषधारी सहपाठी ने मोल तोल नहीं किया, बल्कि 2 सोने के सिक्के निकाले और उन्हें वरिष्ठ योद्धा को दे दिया। फिर उसने अपनी पिंडली से खंजर निकाला, भेड़िए के मुंह से 1 दांत और 2 नुकीले दांत निकाले, उन्हें एक कपड़े में लपेटा और सावधानी से अपनी छाती में खोंज लिया। जादुई जानवर जादुई कणों से भरपूर शक्तिशाली जीव होते हैं जिनमें जादुई शक्ति होती है। यहां तक कि सबसे कमजोर लेवल 1 जादुई जानवर भी सामान्य योद्धा प्रशिक्षुओं या जादूगर प्रशिक्षुओं से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। उनके शरीर के हर हिस्से का एक अनूठा उद्देश्य होता है। उनके दांत तीर के लिए बेहतरीन सामग्री हैं, जो जादुई जानवरों की कठोर खाल और शल्क को आसानी से भेदने में सक्षम हैं। सहपाठी, भेड़िए के पंजे कितने हैं? हत्यारे की पोशाक पहने एक छोटे दुबले पतले छात्र ने भेड़िए के पंजों को छूकर उसकी कीमत पूछी और रेंजर सीनियर ने तुरंत जवाब दिया, पंजे के हिसाब से बेचा जाता है, एक पंजे पर तीन पंजे, आगे के पंजे के लिए दो सोने के सिक्के, पिछले पंजे के लिए एक सोने का सिक्का। गेल वुल्फ के अगले पंजे उसके पिछले पंजों की तुलना में काफी बड़े थे, इसलिए अगले पंजे पिछले पंजों की तुलना में अधिक महंगे भी थे। सहपाठी, ये बहुत महंगा है। अपने गेल वुल्फ को देखो, इसके पंजे खंजर बनाने के लिए पर्याप्त बड़े नहीं हैं। मैं तीन सोने के सिक्कों के बदले दोनों अगले पंजे ले लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें दो पिछले पंजे भी दूंगा, योद्धा वरिष्ठ, जो चिल्ला रहा था, अचानक बीच में बोल पड़ा। ये सुनकर हत्यारे ने आश्चर्य से पूछा, सच में तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, है ना? तुमने ही मजाक शुरू किया, वरिष्ठ योद्धा ने आगे कहा, मैंने कम से कम 8 या 10 नहीं भेड़ियों का शिकार किया है और उन सभी के पंजे पंजे वाले हथियार और चाकू के रूप में इस्तेमाल किए गए थे। तुम पहले व्यक्ति हो जो भेड़ियों के पंजों से खंजर बनाना चाहते हो। हा 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 हा, आसपास के ग्राहक जोर जोर से हंसने लगे, जिससे हत्यारे सहपाठी का चेहरा लाल हो गया। वह मुड़ा, अपने पैर चमकाए और दृश्य से गायब हो गया। हत्यारे को पल भर में गायब होते देख मरे ग्रीन को बहुत आश्चर्य हुआ। इतनी तेज गति से अगर वह ट्रैक पर होता तो क्या वह आसानी से रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता था? मुझे ये दो आंखें चाहिए। कितनी? इससे पहले कि हंसी बंद होती, जादूगर की पोशाक पहने, छाती पर दो पदक पहने एक वरिष्ठ व्यक्ति ने अपना बटुआ निकाला। ओह माय, हम मास्टर पैडी को कैसे भुगतान करने दे सकते हैं? इन दो भेड़ियों की आंखों का आपके द्वारा अनुग्रहित होना केवल उनका सौभाग्य है। कृपया उन्हें सीधे ले जाएं। जादूगर की वेशभूषा में आए इस ग्राहक का सामना करते हुए वरिष्ठ योद्धा, जो अभी तक हत्यारे पर हंस रहा था, ने तुरंत एक चापलूसी भरी मुस्कान बिखेरी तथा उन्हें मुफ्त में देने की पेशकश की, फिर कुछ देर रुका तथा विनती भरे स्वर में बोलना जारी रखा, क्या आप हमें आपके द्वारा बनाई गई नाइट विजन औषधि की एक बोतल दे सकते हैं? वह लेवल एक पोषण मास्टर थे। मरे ग्रीन ने उसकी छाती पर लगे औषधि की बोतल के आकार के पदक को देखा, जिसमें एक स्वर्ण रेखा लगी हुई थी, और उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया, क्योंकि उनकी माँ पेनी कैंपबेल के पास भी उसी आकार का एक पदक था, सिवाय इसके कि उनके पदक पर दो स्वर्ण रेखाएं थीं, जो दर्शाती थीं कि वह लेवल 2 पोषण मास्टर थी। हाँ, आप इसे कल रात को मेरी प्रयोगशाला से ले सकते हैं। पोषण मास्टर पैडी ने एक पल सोचा, अपना बटुआ रख दिया और सहमति में सिर हिलाया। उसने भेड़िए की आंखें ली, जिन्हें रेंजर सीनियर ने सावधानी से पैक किया था, और भीड़ की विदाई के बीच से जाने के लिए मुड़ गया, पीछे एक बहुत ही प्रभावशाली आकृति छोड़ गया। तो पोषण मास्टर बनना इतना लोकप्रिय है? मरे ग्रीन ने ईर्ष्या से अपनी पीछे हत्ती पीठ को देखा। उसकी माँ ने उसे पहले ही बता दिया था कि पोषण मास्टर का दर्जा बहुत ऊंचा है और वे उसे भी ऐसा ही बनने के लिए प्रशिक्षित करना चाहते हैं, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उनका दर्जा इतना ऊंचा, इतना प्रभावशाली था। ऐसी दूरदर्शी माँ का होना कितना आरामदायक था। ये पुनर्जन्म की मुद्रा वास्तव में सही थी। कुछ ही समय में 2 मीटर लंबे गेल वुल्फ को पूरी तरह से नष्ट कर बेच दिया गया, यहां तक कि उसकी हड्डियों और आंतरिक अंगों को भी पैक करके एक रेस्तरां को बेच दिया गया। सब कुछ बेच देने के बाद दोनों विक्रेताओं ने कपड़े को लपेट कर जमीन पर रख दिया, खून से सने कपड़े को कूड़ेदान में फेंक दिया और एक दूसरे का हाथ थामकर सिक्कों से भरे अपने थैले लेकर चले गए। देखो, ये पोषण शॉप है, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे लिए कोई उपयुक्त पोषण है। जब दोनों बिना किसी उद्देश्य के टहल रहे थे, निक ब्राउन ने अचानक एक दुकान की ओर इशारा किया और उत्साहित होकर मरे ग्रीन से कहा। अपना सिर घुमाकर उसने एक पोषण शॉप देखी जिस पर लिखा था सिमोना अप्रेंटिस पोषण शॉप। सिमोना नाम देखकर मरे ग्रीन को लगा कि यह परिचित लग रहा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इसे पहले कहां सुना था। स्वागत। अंदर प्रवेश करते ही 20 वर्ष की उम्र वाली एक साफ चेहरे वाली महिला परिचारिका ने उनका स्वागत किया। आप दोनों छात्र किस तरह के पोषण खरीदना चाहते हैं? हमारी दुकान में हाल ही में मेडिटेशन पोषण, मैजिक एफिनिटी पोषण, मेंटल मैजिक पोषण और कॉन्सेंट्रेशन पोषण का एक बैच आया है। इन सभी को एक हफ्ते से भी कम समय पहले परिष्कृत किया गया था, जिससे बेहतरीन प्रभाव और गुणवत्ता की गारंटी मिलती है। परिचारिका की दृष्टि अनुभवी थी, उसने तुरंत उन्हें जादू अकादमी के नए छात्र के रूप में पहचान लिया और ध्यान अभ्यास में सहायक औषधियों की सलाह दी। इन औषधियों के बारे में सुनकर दोनों की आंखें चमक उठी और उन्होंने तुरंत उससे वह सामान दिखाने को कहा। ध्यान औषधि, ये 4 घंटे तक ध्यान अभ्यास में सहायता कर सकती है और ध्यान को गति प्रदान करती है। यदि इसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लिया जाए जो अभी तक ध्यान अवस्था में प्रवेश नहीं कर पाया है, तो ये ध्यान अवस्था में प्रवेश करने की संभावना को बढ़ा सकती है। जादुई आकर्षण औषधि, यह स्थायी रूप से उपयोगकर्ता की जादुई आकर्षण शक्ति को बढ़ा सकती है, जादुई कणों को ध्यान अवस्था में भाग लेने के लिए आकर्षित कर सकती है, अभ्यास में सहायता कर सकती है तथा 8 घंटे तक चल सकती है। अल्पविराम। पूरे पोषण शॉप में 20 से ज्यादा तरह के पोषण थे, जिन्हें मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा गया था, पहला, जादूगरों और योद्धाओं को उनके अभ्यास में मदद करने वाले पोषण, दूसरा, अस्थायी रूप से युद्ध शक्ति बढ़ाने वाले पोषण, और तीसरा, विशेष प्रभाव वाले पोषण। सभी लोकप्रिय थे और खूब बिके। मरे ग्रीन ने ध्यान औषधि को बड़ी लालसा से देखा, लेकिन अपनी माँ की सलाह को याद करते हुए उन्होंने अंततः इसे खरीदने की योजना छोड़ दी। स्वयं जादू की साधना करने से पहले उसे सहायक अभ्यास औषधियों को न लेने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा यह उसकी योग्यता के मूल्यांकन को प्रभावित करेगा, उसके बाद के करियर विकास की योजनाओं को बाधित करेगा और आसानी से निर्भरता को जन्म देगा, जिससे बाद में सहायक अभ्यास औषधियों के बिना काम करना मुश्किल हो जाएगा। पोषण शॉप से निकलने के बाद दोनों ने अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए एक जादुई हथियार की दुकान का भी दौरा किया। मैजिक अकादमी में लौटने से पहले उन्होंने एक साथ 2 घंटे से अधिक समय तक खरीदारी की, जहां वे अलग होने से पहले अगले दिन एक साथ कक्षा में भाग लेने के लिए सहमत हुए। अपने छात्रावास में वापस आकर ऊर्जावान मरे ग्रीन ने 1 घंटे तक ध्यान करने का प्रयास किया, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई, लगभग दोपहर के समय की स्थिति जैसी ही। स्कूल के तीसरे दिन मरे ग्रीन और निक ब्राउन एक साथ कक्षा में गए। आज की कक्षा जादुई पौधों और जानवरों की बुनियादी समझ थी, जो 40 छात्रों की एक मध्यम आकार की कक्षा थी, जिसमें उनकी ध्यान कक्षा 1 और कक्षा 2 एक साथ उपस्थित थे। जब कक्षा की घंटी बजी, मरे ग्रीन, जो निक ब्राउन के साथ कानाफूसी कर रहा था, रुक गया, अपने स्टूल पर सीधा बैठ गया और शिक्षक के आने का इंतजार करने लगा। तभी एक दुबली पतली बेहद खूबसूरत महिला शिक्षिका कक्षा में दाखिल हुई, जिसकी सही उम्र का पता नहीं चल पाया। उसने हरे रंग का जादुई लबादा पहना हुआ था और उसकी छाती पर एक पदक लगा हुआ था। नमस्ते सभी, मेरा नाम सिमोना लिंडे है। अगले साल मैं इस कक्षा के लिए आपकी शिक्षिका रहूंगी। मुझे उम्मीद है कि इस कक्षा में सभी का व्यवहार अच्छा होगा। हालांकि इस महिला शिक्षक की लंबाई 1.6 मीटर से भी कम थी, लेकिन उनकी आभा 2 मीटर तक फैली हुई थी। जैसे ही उन्होंने बात की, एक मनमोहक आभा ने पूरी कक्षा को घेर लिया, जिससे मरे ग्रीन, जो पहले से ही सीधे बैठे थे, को अपनी रीढ़ की हड्डी पर दबाव महसूस हुआ, जिससे उन्हें भ्रम हुआ कि यह उन्हें झुका देगा। सिमोना लिंडे ने अपनी आंखें उठाई और कक्षा को देखा, जैसे जानवरों का राजा अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रहा हो। उसकी नजरों से आकर्षित हुए छात्र, जिनका रंग पहले से ही गोरा था और भी ज्यादा पीला पड़ गया, सहज रूप से सिमोना लिंडे की नजरों से बचने के लिए अपने सिर नीचे कर लिए, उसकी नजरों से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उसकी निगाहें जल्दी से मरे ग्रीन की दिशा में घूम गईं। सिमोना लिंडे की आंखों का सीधा सामना करते हुए मरे ग्रीन ने महसूस किया कि अदृश्य दबाव और भी मजबूत हो गया है, और दमनकारी बल धीरे धीरे सिमोना लिंडे के साथ उसकी निरंतर आंख के संपर्क के साथ बढ़ता गया। उनके शरीर की वृत्ति मरे ग्रीन को बताती रही, नीचे देखो, उसकी नजरों से नजरें मत मिलाओ। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, मरे ग्रीन ने अपना सिर नीचे करने की तैयारी की, लेकिन तभी उसकी आत्मा, जो उसके एकल ध्यान के दौरान चुप थी, धीरे धीरे उबलने लगी, जिससे एक समान अदृश्य शक्ति उत्पन्न हुई, जिसने दबाव का विरोध किया और उसे बताया, नीचे देखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके शरीर ने 2 अलग अलग सुझाव उत्पन्न किए, लेकिन जबकि मरे ग्रीन अभी भी इस बात को लेकर असमंजस में था कि किस सुझाव को चुना जाए, सिमोना लिंडे की नजर पहले ही हट चुकी थी, हालांकि जब उसने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखों में स्वीकृति की झलक थी। हम सिमोना लिंडे छात्रों की प्रतिक्रियाओं से बहुत संतुष्ट दिखी। उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी, सिर हिलाया और आगे बोली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरी कक्षा में ध्यान से सुनते हैं या नहीं, जब तक आप अंतिम परीक्षा पास करते हैं, आप पास हो जाते हैं। हालांकि अगर कोई छात्र अच्छा प्रदर्शन करता है, स्वेच्छा से सख्त मूल्यांकन के लिए आवेदन करता है और अच्छे परिणाम प्राप्त करता है, तो मैं उसे स्नातक होने तक अपने पोषण प्रयोगशाला सहायक के रूप में रख सकता हूँ। सिमोना लिंडे जब बोल रही थी तो वह थोड़ा पीछे झुक गई और अपनी छाती को फुला लिया, जिससे उनकी छाती पर रखा पदक और भी अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगा। पदक का आकार एक औषधि की बोतल जैसा था, जो पूरी तरह से चांदी का बना था, लेकिन सूरज की रोशनी में ये प्रकाश को परावर्तित नहीं करता था और कुछ हद तक काला भी दिखाई देता था। थोड़ी सी जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसकी सामग्री के बारे में बता सकता था। मित्र, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पदक पर 5 स्वर्ण रेखाएं जड़ी हुई थी। 5 पंक्तियां, स्तर 5 पोषण मास्टर। इस जादुई दुनिया में योद्धा और जादूगर 2 सामान्य शब्द हैं। जो कोई भी युद्ध आभा का विकास करता है उसे योद्धा कहा जाता है, लेकिन योद्धाओं के भीतर ड्रैगन नाइट, पवित्र शूरवीर, विनाश शूरवीर और स्पेलब्रेकर होते हैं, जिन्हें योद्धा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन वे सामान्य योद्धाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली पेशेवर होते हैं। जादूगर भी इसका अपवाद नहीं है। जादुई शक्ति का विकास करना ही जादूगर बनाता है, लेकिन जादूगरों के भीतर भी युद्ध जादूगर, कीमियागर, रून मास्टर, पोषण मास्टर और साइकिक जैसे पेशे होते हैं। पोषण मास्टर जादूगर होते हैं जो पोषण को परिष्कृत करते हैं। वे जादुई पौधों और जानवरों को विशेष कार्यों वाले पोषण में बदलने के लिए विशेष शोधन विधियों का उपयोग करते हैं, जिनका उपयोग उपचार, खेती, युद्ध और विभिन्न अन्य पहलुओं के लिए किया जा सकता है। मूलतः हर कोई पोषण मास्टर पर निर्भर करता है, जिसके कारण पोषण मास्टर को बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त होता है और वह बहुत धनवान होता है। और लेवल 5 पोषण मास्टर पहले से ही उनके बीच एक मास्टर है, एक सच्चा मास्टर। नॉर्थलैंड की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि रॉयल कैपिटल या एम्पायर में भी उनकी स्थिति असाधारण है। यदि कोई व्यक्ति उसके अधीन अध्ययन कर सके, भले ही वह केवल प्रयोगशाला सहायक के रूप में हो, प्रशिक्षु के रूप में नहीं, तो उसके द्वारा दिया गया थोड़ा सा मार्गदर्शन प्रयोगशाला के वातावरण के साथ मिलकर पोषण मास्टर बनना अत्यधिक संभव बना देगा। छात्र, जिन्होंने जादू शिक्षक की पहचान कर ली थी, जो उन्हें शिक्षा देने वाला था, सभी चौंक गए और फिर उनकी उत्सुक निगाहें सिमोना लिंडे की ओर मुड़ गईं, जो मंच पर गर्व से खड़ी थी। कौन एक महान और धनी पोषण मास्टर नहीं बनना चाहेगा? हे, उनकी उत्कट निगाहों का सामना करते हुए सिमोना लिंडे अविचलित थी। ठीक है, चलो अब आधिकारिक तौर पर कक्षा शुरू करते हैं। एक कक्षा के बाद, यदि इसका वर्णन करने के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता, तो वह होता अतिव्यय, 3 शब्दों के लिए अत्यधिक धनी, और 4 शब्दों के लिए मरे ग्रीन। केवल अमानवीय रूप से अपव्ययी का ही प्रयोग कर सकते थे। मरे ग्रीन ने अनिच्छा से पाठ्य पुस्तकों की अनुपस्थिति को स्वीकार कर लिया था, इसलिए उन्होंने मान लिया कि शिक्षिका सिमोना भी पिछली कक्षा की इतिहास की शिक्षिका की तरह मौखिक रूप से ही सारा ज्ञान देंगी। हालांकि उसने देखा कि टीचर सिमोना ने अपने बाएं हाथ से हवा को हल्के से पकड़ा और अचानक एक जादुई पौधा उसके हाथ में प्रकट हो गया। हवा से वस्तुएं उत्पन्न करना, जादूगर ऐसा कर सकते थे, लेकिन ये केवल आंखों का धोखा था। हालांकि इस दुनिया में जहां जादू वास्तव में मौजूद है, इस तरह की निम्न स्तरीय चाल का उपयोग नहीं किया जाएगा, ये जादू द्वारा प्राप्त किया गया प्रभाव था। इस प्रकार उपस्थित सभी छात्रों ने एक साथ सिमोना के बाएं हाथ की ओर अपनी नजर घुमाई। जैसी की उम्मीद थी, टीचर सिमोना की गोरी जेड जैसी उंगलियों में उन्होंने एक साधारण ग्रे रंग की अंगूठी पहनी थी, जो उनके नाजुक रूप से मेल नहीं खा रही थी। एक अंतरिक्ष वलय, यह एक कीमियागर का चमत्कार था। यहां तक कि सबसे खराब स्पेस रिंग, जो एक क्यूबिक मीटर की है, की कीमत 1000 सोने से शुरू होती है, जिसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह खजाना अमूल्य था और शायद ही कभी उपलब्ध हो, यहां तक कि इसकी कीमत से कई गुना अधिक कीमत देने पर भी इसे हासिल नहीं किया जा सकता था। कक्षा के काफी समय बाद, मरे ग्रीन और निक ब्राउन, जो कैफेटेरिया में भोजन कर रहे थे, अभी भी इस बात पर आश्चर्यचकित थे कि शिक्षिका सिमोना कितनी धनी थी। मुझे ये क्लास बहुत पसंद आई। टीचर सिमोना ने जिन पौधों के बारे में बात की, वे बहुत दिलचस्प थे। मरे, मुझे अपनी नोटबुक उधार दो। मैं क्लास के बाद इसकी समीक्षा करना चाहता हूं और अंतिम परीक्षा में पूर्ण अंक प्राप्त करने का प्रयास करना चाहता हूं, ताकि प्रथम स्थान पर आ सकूं। हे, मरे ग्रीन ने अपने होठों को तिरस्कारपूर्ण ढंग से मोड़ा, निक ब्राउन को पूरी घृणा के साथ देखा, अपने हाथ में पकड़े चाकू और कांटा को उसके गालों में घोंपना चाहा, ताकि देख सके कि इस व्यक्ति की चमड़ी कितनी मोटी है। कक्षा से पहले, क्या तुमने नहीं कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम नोटबुक लाए हो या नहीं? वैसे भी तुम्हारा अध्ययन का ध्यान इस कक्षा पर नहीं था। सुंदर और उदार शिक्षिका सिमोना ने अपनी उत्कृष्ट शिक्षण क्षमता से मुझे प्रभावित किया और मुझे यह महसूस कराया कि मेरे लिए 4 साल के अध्ययन के लिए इस पाठ्यक्रम को प्राथमिकता देना ही उचित है। खैर, दुर्भाग्य से अकादमी में प्रवेश करने से पहले ही मैंने इस कोर्स को प्राथमिकता के रूप में नामित कर लिया था। तो क्या आपको लगता है कि मैं अपने प्रतिद्वंद्वी की मदद कर पाऊंगा? आह, तुम, निक ब्राउन ने मरे ग्रीन की ओर देखा, जिसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया था, और सोचा, अच्छा, मैंने पहले सोचा था कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह के इंसान होगे। ये कैसा आदमी है जो लाभ के लिए धार्मिकता को भूल जाता है? हम, अगर ऐसा है तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो बच्चे, मेरा तुरुप का पत्ता चखो। निक ब्राउन अपनी आंखें मूंदते हुए तुरंत मरे ग्रीन की कलाई पकड़ ली, एक दुखी भाव दिखाते हुए और एक विनती भरे लहजे में कहा, मरे, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारा चाचा हूँ। अगर हम, चाचा और भतीजे, एक साथ काम करें तो इस कक्षा पर हावी होना बहुत आसान होगा। बाहरी लोगों को हम पर हंसने मत दो। ।। लंबे और बलिष्ठ निक ब्राउन को अपने सामने भावुक कर देने वाला अभिनय करते देख मरे ग्रीन को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई है और उसके ऊपर घृणा की लहर छा गई है। ये देखना असहनीय था। जाने दो, मरे ग्रीन ने 2 बार अपनी बांह हिलाकर निक ब्राउन को दूर करने की कोशिश की, लेकिन निक ब्राउन का विशाल शरीर दिखावे के लिए नहीं था, मरे ग्रीन किसी भी तरह से उसे दूर नहीं कर सकते थे। छोटे मरे, मेरी नोटबुक ले लो और चले जाओ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, मैं तुरंत भाग जाऊंगा। निक ब्राउन ने मरे ग्रीन की नोटबुक ले ली और अपना लंच पूरा किए बिना ही जल्दी में कैफेटेरिया से बाहर निकल गए। आह, मैं कितनी बुरी संगत में हूँ। निक ब्राउन की अत्यंत दयनीय पीठ को देखकर एक सफल मुर्गी चोर की तरह मरे ग्रीन ने अपने माथे पर हाथ रखा और आह भरी। निक ब्राउन के जाने से मरे ग्रीन की भूख में काफी सुधार हुआ। इसलिए जब उसने अपनी प्लेट में रखे दो स्टेक खा लिए तो उसने अपना कांटा बढ़ाया और निक ब्राउन की प्लेट से बची हुई तली हुई मछली को निकाल लिया और अपना खाना जारी रखा। स्वच्छ प्लेट अभियान मुझसे शुरू करें। भरपेट खाने के बाद मरे ग्रीन खड़े हुए और अवचेतन रूप से चारों ओर देखने लगे। कई सहपाठी भी खाना खा रहे थे और उन्होंने देखा कि कक्षा दो के कई छात्र कुछ ही दूरी पर खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। कक्षा दो अधिकार पूर्वक उत्तरी कुलीन संतानों के लिए भी एक वर्ग होना चाहिए, लेकिन उनके उच्चारण को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि वे उत्तर से हैं। ये सोचते हुए मरे ग्रीन ने संक्षेप में याद किया। हालांकि आज कक्षा में उसका ज्यादातर ध्यान सिमोना पर था, लेकिन किसी कारण से उसकी बेहतर याददाश्त ने उसे कक्षा दो के सभी छात्रों के चेहरे साफ साफ याद रखने में मदद की। उनकी त्वचा गहरे रंग की और महीन थी, उनमें से कोई भी उत्तर से नहीं था। हालांकि मरे ग्रीन ने इस खोज के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार उनके लिए दक्षिण के लोगों का उत्तर में अध्ययन करने के लिए आना असामान्य नहीं था। बहुत से लोग विदेश में अध्ययन करने के लिए गए थे, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुर्ने कैफेटेरिया छोड़ दिया और अपने छात्रावास में वापस आ गए। ओह, दो अक्षर। दरवाजा खोलते ही उसे प्रवेश द्वार पर दो पत्र पड़े मिले। मरे ग्रीन ने उन्हें उठाया, दरवाजा बंद किया, सोफे पर बैठे और लिफाफे खोले। एक पत्र लिवी एलिस की ओर से एक भोज का निमंत्रण था, जिसका जिक्र उसने पहले किया था। दूसरा संदेश उनके सबसे बड़े भाई राइन ग्रीन का एक नियमित अभिवादन था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या वह स्कूली जीवन के अनुकूल हो रहे हैं, और फिर शनिवार की सुबह उन्हें ग्रीन परिवार की संपत्ति में वापस लौटने के लिए कहा था, जिसे ग्रीन परिवार ने एलिस सिटी के बाहर खरीदा था। काउंट परिवार के रूप में, हालांकि ग्रीन परिवार की शुरुआत सीमा क्षेत्र में हुई थी, काउंटेस की व्यवस्था के तहत उन्होंने उत्तर के मुख्य शहर एलिस सिटी में काफी संपत्ति अर्जित की थी। वहां दुकानें, कसाईखाने, खरीद कार्यालय और निश्चित रूप से रियल एस्टेट, जिसमें एक हॉलिडे एस्टेट भी शामिल था। दुर्भाग्य से महत्वपूर्ण वित्तीय दबाव के कारण वे केवल एलिस सिटी के बाहर एक एस्टेट खरीद सकते थे। पत्र पढ़ने के बाद मरे ग्रीन ने अपने बड़े भाई को जवाब देने के लिए अपनी कलम उठाई, जिसमें पिछले कुछ दिनों का संक्षिप्त विवरण था। जहां तक इस बात का सवाल था कि उनके बड़े भाई उन्हें शनिवार को एस्टेट में वापस क्यों लाना चाहते थे, तो उन्होंने बस इतना कहा कि उन्हें संदेश मिला था। उन्होंने कारण नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें पता था कि तब उन्हें पता चल जाएगा। पत्र लिखने के बाद मरे ग्रीन नीचे चले गए। जो छात्र एलिस अकादमी में प्रवेश ले सकते थे और इतनी महंगी ट्यूशन का खर्च उठा सकते थे, भले ही वे कुलीन संतान न हो, वे अमीर व्यापारियों के बच्चे थे जिन्हें बचपन से ही लाड़ प्यार और सेवा दी जाती थी। इसलिए छात्रावास भवन के नीचे एक समर्पित कर्मचारी था जो इन छात्रों के लिए ज्यादातर काम करता था, जब तक कि उन्हें भुगतान किया जाता था। पत्र भेजना तो छोटी बात थी। जैसे ही मरे ग्रीन ने भुगतान किया, किसी ने उनका पत्र लिया और राइन ग्रीन के छात्रावास में पहुंचा। अगले दो दिनों में पाठ्यक्रम थे जादुई वस्तुओं की सराहना और जादुई शिष्टाचार और मंत्र। जादुई वस्तुओं की सराहना ने सभी को जादुई वस्तुओं को पहचानना और उनमें अंतर करना सिखाया। जादुई शिष्टाचार और मंत्र में जादूगर के शिष्टाचार के साथ साथ जादू की साधना और जादू में बाद में इस्तेमाल किए जाने वाले मंत्रों के बारे में बताया गया। इसमें बताया गया कि मंत्र क्यों पढ़े जाते हैं, उन्हें पढ़ते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और मंत्रों की उत्पत्ति और रचना क्या है। इन दोनों कक्षाओं के शिक्षक काफी अच्छे थे और पाठ्यक्रम की सामग्री पर्याप्त थी, जिससे मरे ग्रीन को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। हालांकि शायद इसलिए क्योंकि सिमोना बहुत प्रभावशाली थी, इन दोनों प्रशिक्षकों की शिक्षण शैली शिक्षिका सिमोना की तरह तेज नहीं थी, इसलिए मरे ग्रीन को हमेशा यह महसूस होता था कि ये दोनों वर्ग कुछ हद तक प्रेरणाहीन थे और उनमें उत्साह की कमी थी। ये शुक्रवार की शाम थी, लिवी एलिस के भोज की रात। समय देखते हुए मरे ग्रीन को लगा कि अब जाने का समय हो गया है, इसलिए उन्होंने अपनी अलमारी से एक शानदार औपचारिक सूट निकाला और पहन लिया। इतना सुंदर, पूरे शरीर वाले दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप को व्यवस्थित करते हुए मरे मुस्कुराए, अपने वर्तमान शरीर से बहुत संतुष्ट थे। तैयार होने के बाद मरे ग्रीन चले गए और सड़क के किनारे निक ब्राउन का इंतजार करने लगे, जिन्हें भी आमंत्रित किया गया था। रात के खाने के समय कई छात्र बाहर खाना खा रहे थे या खाना खाकर लौट रहे थे और लोग आ जा रहे थे। वाह, वह छात्र कितना सुंदर है, मुझे आश्चर्य है कि वह कौन है। हाँ, बहुत सुंदर। हालांकि उसने इसे स्पष्ट रूप से नहीं सुना, मरे ग्रीन ने कुछ फुसफुसाहटें सुनी। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि छात्राएं चुपके से उसे देख रही थीं। मरे ग्रीन के होंठ ऊपर की ओर मुड़े और उसने उन्हें एक सौम्य मुस्कान दी। दोनों छात्राएं जिस व्यक्ति को वे देख रही थीं, उसे देखकर चौंक गईं, उनका चेहरा लाल हो गया, उन्होंने जल्दी से अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया और भाग गईं। उनके जल्दबाजी में युवा आकृतियों को जाते देख मरे ग्रीन ने थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन मन ही मन वह बेकाबू होकर हंस रहा था। पिछले जन्म में वह इस दृश्य की केवल कल्पना ही कर सकता था, पर अब यह वास्तविकता बन चुका था। वह प्रसन्न कैसे न हो सकता था। तस्क तस्क तस्क, है न मरे, तुम यहाँ महिला छात्रों के साथ क्यों फ्लर्ट कर रहे हो? खुशी हमेशा क्षणभंगुर होती है। इससे पहले कि मरे ग्रीन पूरी तरह से आनंद ले पाते, लंबे निक ब्राउन ने उनका ध्यान भटका दिया और उनका मजाक उड़ाया। हे हे, हमें देर हो जाएगी, चलो चलें। मरे ग्रीन ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे विषय बदल दिया। फिर दोनों ने रास्ते में छोटे छोटे उपहार खरीदे और भोज स्थल की ओर चल पड़े। चलते चलते बातें करते रहे। सड़क पर चलते हुए दोनों तरफ की दुकानें और भी आलीशान होती गईं, लेकिन उनका कारोबार ठंडा होता गया। दोनों बिना रुके आगे बढ़ते रहे। जल्दी से सड़क छोड़कर छात्र सेवा क्षेत्र के मनो जिले में पहुंच गए। अंततः वे एक छोटे से मनोघर में पहुंचे जिसके प्रवेश द्वार पर रोज मैनर लिखा था और उसके दोनों ओर गुलाब की झाड़ियां लगी हुई थी। सम्माननीय महोदय, रोज मैनर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए एक सुखद शाम की कामना करते हैं। अपने निमंत्रण पत्र लेकर मुख्य द्वार पर प्रवेश करने तथा स्वागत कक्ष में अपने उपहार रखने पर स्वागत कक्ष में उपस्थित स्टाफ ने उत्साह से भरकर उन्हें आशीर्वाद दिया। बैंक्वेट हॉल में प्रवेश करते ही लीवी एलिस, जो हॉल के मध्य में छात्रों का मनोरंजन कर रहे थे, तुरंत उनके पास आए, बारी बारी से उन दोनों से हाथ मिलाया और अपना आभार व्यक्त किया। हाहा, आप दोनों का मेरे भोज में स्वागत है। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। आप बहुत दयालु हैं। आपका निमंत्रण पाकर हमें बहुत गर्व हो रहा है। दोनों ने भोज के मेजबान से कुछ विनम्र शब्दों का आदान प्रदान किया। लीवी एलिस भी उतने ही व्यस्त थे। उनका अभिवादन करने और कुछ पल बातचीत करने के बाद वे अन्य नए आए मेहमानों का मनोरंजन करने चले गए। भोज कक्ष में प्रवेश करते ही मरे ग्रीन निक ब्राउन से अलग हो गए और स्वतंत्र रूप से घूमने लगे। मरे ग्रीन खाने की मेज पर गया, जूस का गिलास मंगवाया, प्लेट उठाई, मेज से कुछ भुना हुआ मांस, सब्जियां और आलू लिए और अकेले खाने के लिए एक कोने में चला गया। किसी कारण से उसे हाल ही में बहुत भूख लगी थी। वस्तु का एक कटोरा लेने के लिए वापस गया और अंत में पिज्जा और ब्लूबेरी पाई के कुछ स्लाइस और एक फल की थाली खाए। जब तक वह लगभग 70% भर गया, भोज का समय लगभग आ गया था और लगभग सभी उपस्थित लोग आ चुके थे। चारों ओर देखने पर पता चला कि वहां लगभग 100 लोग थे, जो इस साल भर्ती हुए नए छात्रों में से लगभग आधे थे। अपने मुंह के अवशेषों को रुमाल से पोंछते हुए और सर्विस स्टाफ द्वारा उपलब्ध कराए गए गर्म तौलिए से अपने हाथ साफ करते हुए, मरे ग्रीन ने वाइन का गिलास उठाया और डिनर पार्टी के केंद्र की ओर चल दिए। अरे लिवी, आज रात का खाना वाकई बहुत बढ़िया है। भुना हुआ मांस कोमल और रसदार है और ब्लूबेरी पाई बेहतरीन तरीके से पकाई गई है। बस लाजवाब, मैंने गलती से थोड़ा ज्यादा खा लिया। अगर मैं भविष्य में इसे फिर से खा सकूं तो बहुत बढ़िया होगा। मरे ग्रीन ने अपना गिलास उठाया, लिवी एलिस के साथ उसे टकराया और भोज के मेजबान के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। मरे ग्रीन की तारीफ सुनकर लिवी एलिस मुस्कुराए और जवाब दिया, हाहा मरे, तारीफ के लिए शुक्रिया। आज की पाई हमारे परिवार के पेस्ट्री शेफ ने बनाई थी। अगर आप भविष्य में इसे फिर से खाना चाहते हैं तो मुझे बताएं और मैं इसे बेक होने के बाद आपके छात्रावास में भेज दूंगा। हाहा, सच में? तो फिर मैं भविष्य में पीछे नहीं हटूंगा। लिवी एलिस का अभिवादन करने के बाद मरे ग्रीन और निक ब्राउन मिले, कुछ मिनट तक बातचीत की और फिर मरे ग्रीन एक महिला छात्रा के पास चले गए। शुभ संध्या सुंदर महिला, मेरा नाम मरे ग्रीन है। मार्च क्लेमेंस। अपने हाथ में शराब का गिलास उठाकर उसने धीरे से उसे खटखटाया और एक घूंट लिया। मरे ग्रीन ने सीधे अपने सामने खड़ी महिला की ओर देखा। उसने सफेद पोशाक पहनी हुई थी। वह बहुत बूढ़ी नहीं थी, लेकिन उसका फिगर बहुत आकर्षक था। उसके काले चमकीले बाल सीधे उसकी कमर तक गिर रहे थे। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और एक जोड़ी आकर्षक आंखें जिज्ञासा से उसे घूर रही थी। ग्रीन परिवार का सदस्य, आपको देखकर मुझे शुरू में लगा कि आप कैंपबेल परिवार के सदस्य हैं। हे हे, मैं अपनी माँ की तरह हूँ। मेरी माँ पेनी कैंपबेल हैं, मेरे नाना कैंपबेल मार्क्विस हैं और मेरे पिता ग्रीन अर्ल हैं। किसी अपरिचित कुलीन व्यक्ति से अपना परिचय देते समय अपने वंश का उल्लेख करना आवश्यक है, ताकि परिचय कराने वाले व्यक्ति को अपनी स्थिति का पता चल सके। लियू बेई की तरह सत्ता में आने से पहले वह एक पुआल चप्पल बेचने वाला था, उसे कौन जानता था। लेकिन जब उसने कहा कि वह झोंगशान के जिंग राजा का वंशज है तो वह हान शाही खून था और उसने आसानी से गुवानयू और झांग फी को जीत लिया। आप राइन ग्रीन के छोटे भाई हैं, ये सही है। अज्ञात मरे ग्रीन की तुलना में राइन ग्रीन का नाम काफी प्रसिद्ध है। उनका आत्म परिचय बस इतना है कि वे ग्रीन परिवार के पहले वारिस हैं। राज्य के उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र का ग्रैंड ड्यूक सबसे सम्मानित और शक्तिशाली कुलीन है। उसके नीचे 4 मार्क्विस और 11 अर्ल हैं। ये 16 कुलीन मूलतः उत्तरी क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं और प्रसिद्ध महान कुलीन हैं। ग्रीन परिवार की पहली वारिस के रूप में राइन ग्रीन जन्म से ही पूरे नॉर्थलैंड में ध्यान का केंद्र रही हैं। भविष्य की काउंटेस बनने की इच्छा रखने वाली महिलाओं की संख्या अनगिनत है और मार्च क्लेमेंस कोई अपवाद नहीं है। मरे ग्रीन ने मार्च क्लेमेंस की ओर थोड़ी उदास नजर डाली। मैं तुम्हें अपनी सहपाठी समझता था, लेकिन तुम मेरी भाभी बनना चाहती हो। किसी को ये जानना चाहिए कि जब उसके पिता स्टोर्ड ने अपनी माँ इस हंस का मांस खाने में कामयाबी हासिल की तो उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया गया जो अपने पिता ग्रीन परिवार के युवा शेर से आगे निकल जाएगा। उसके बड़े भाई राइन ग्रीन के प्रण्य संबंध के मानक अगर उसके पिता से आगे नहीं भी बढ़े तो कम से कम उनसे मेल तो खाते ही होंगे। इसलिए उसके वर्तमान लक्ष्य मार्क्विस परिवारों की वैध बेटियां हैं। उनके पिता राइन ग्रीन की महत्वाकांक्षा का समर्थन करने वाले पहले व्यक्ति थे क्योंकि उनकी मां ने ग्रीन परिवार के कुलीन जीन में काफी सुधार किया था। मिठास का स्वाद चखने के बाद ग्रीनर्ल ने राइन ग्रीन को बड़ी मात्रा में प्रण्य निधि भी प्रदान की जिससे मरे ग्रीन अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्यालु हो गए। जहां तक मार्च क्लेमेंस नाम का सवाल है, उन्होंने इसे अपने बड़े भाई से कभी नहीं सुना था, इसलिए वह क्लेमेंस परिवार की वैध बेटी नहीं होनी चाहिए बल्कि एक समानांतर शाखा से होनी चाहिए। अगला, मार्च क्लेमेंस के साथ एक संक्षिप्त बातचीत के बाद मरे ग्रीन ने इन सहपाठियों के नाम याद किए, फिर सक्रियतापूर्वक अपना वाइन ग्लास उठाया और अगले छात्र की ओर चल पड़े। शिक्षक लिंडन द्वारा कक्षा में नाम पुकारे जाने के क्रम में कुछ मार्क्विस और अर्ल वंशजों को टोस्ट देने के बाद मरे ग्रीन भोज के केंद्र से चले गए और एक बार काउंटर पर गए, एक गिलास फलों के रस का ऑर्डर दिया, पास में एक सोफा पाया और एक ब्रेक के लिए बैठ गए। उसने कुछ घूंट ही लिए थे कि निक ब्राउन, जो हॉल में इधर उधर घूम रहा था, आया और मरे ग्रीन के बगल में सोफे पर बैठ गया। उफ, मैं थक गया हूँ, कोई फायदा हुआ? आपने कितनी लड़कियों को नाचने के लिए कहा? मरे ग्रीन ने चिढ़ाते हुए कहा। लेकिन निक ब्राउन ने हाथ हिलाते हुए कहा, उस बारे में बात मत करो, मैंने कुछ ऐसा खोजा है जो धरती हिला देने वाला है। देखो, क्या ये बोझ कुछ अलग नहीं लग रहा है? निक ब्राउन की बातें सुनकर मरे ग्रीन ने अपना सिर घुमाया और कई बार इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला, कुछ भी चौंकाने वाला तो दूर की बात थी। क्या हुआ? मुझे लगता है सब ठीक है। जब वह घर पर होता था तो काउंटेस मरे ग्रीन के साथ विशेष रूप से सख्त थी। वह मूल रूप से केवल परिवार के बुजुर्गों की उपस्थिति में औपचारिक भोज में भाग लेता था। यह उसका पहला मौका था जब वह केवल साथियों के साथ भोज में भाग ले रहा था, इसलिए उसे दोनों के बीच का अंतर नहीं पता था। उन लोगों के समूह को देखो, हैरान मरे ग्रीन का सामना करते हुए निक ब्राउन ने सीधे ध्यान कक्षा 2 के छात्रों की ओर इशारा किया और फिर समझाना शुरू किया। इस भोज में लगभग 20 छात्र हैं जो नॉर्थलैंड से नहीं हैं। उनमें से कुछ सेंट्रल रॉयल कैपिटल से हैं, कुछ पूर्व पश्चिम और दक्षिण से हैं, वे सभी यहाँ हैं। और इन लोगों का दर्जा बहुत ऊंचा है, सबसे कम अर्ल वंशज हैं। आह, ये सुनकर मरे ग्रीन को भी, जो इस दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लगा कि कुछ गड़बड़ है। एलिस अकादमी की शिक्षण क्षमता मजबूत है, लेकिन पूरे लैनिया किंगडम में देखें तो पूर्व पश्चिम और दक्षिण में ऐसे स्कूल हैं जो इससे कमतर नहीं है। सेंट्रल रॉयल कैपिटल का तो कहना ही क्या, जो किंगडम के शीर्ष स्कूल का दावा करता है। अगर इन लोगों की पारिवारिक पृष्ठभूमि इतनी महान है तो वे पढ़ाई के लिए अपरिचित नॉर्थलैंड में हजारों मील की यात्रा कैसे कर सकते हैं? क्या ये बर्फ देखने के लिए हो सकता है? हास्यास्पद मत बनो, उनका अवश्य ही कोई अन्य उद्देश्य होगा। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मरे ग्रीन ने मुड़कर चुपचाप लोगों के इस समूह को देखा। आखिरकार उसने कुछ असामान्य देखा। हिस, ये सब लोग तो मर्द हैं, आपने भी नोटिस किया? दोनों ने एक दूसरे को देखा। निक ब्राउन ने अपना वाइन ग्लास घुमाया, पीछे झुके, उनकी आंखें ठंडी थीं और उन्होंने घृणा से कहा, वे वास्तव में हमारे नॉर्थलैंड आइस लॉर्ड्स पर हाथ डालना चाहते हैं। यह अक्षम्य है। मरे ग्रीन, नॉर्थलैंड आइस लॉर्ड्स, वह क्या है? हालांकि मरे ग्रीन ने हाल ही में कड़ी मेहनत से पढ़ाई शुरू की थी, अक्सर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता था, लेकिन उसे वास्तव में 4 शब्द नॉर्थलैंड आइस लॉर्ड्स याद नहीं थे। नॉर्थलैंड का अल्पाइन स्नो लॉर्ड्स काफी मशहूर था, लेकिन इसे छीनने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए उच्च स्थिति वाले कुलीन युवकों के समूह को भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा यदि यह सचमुच इतना कीमती होता तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे फ्राइज भेजना कुत्तों के आगे मांस के बंस फेंकने जैसा होता, वे हमेशा के लिए गायब हो जाते। मरे ग्रीन के हैरान चेहरे को देखकर निक ब्राउन को पता चल गया कि वह उसे समझ नहीं पाया है और कुछ पल के लिए वह अवाक रह गया। हालांकि वह जानता था कि उसका भतीजा कुछ हद तक अनभिज्ञ है, लेकिन उसने उससे इतनी नासमझी की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए उसने झल्लाते हुए कहा, ये नॉर्थलैंड की सबसे सुंदर महिला है, महारानी एलिजाबेथ एलिस, नॉर्थलैंड आइस लॉर्ड्स। आपने उसके बारे में नहीं सुना है? महामहिम एलिजाबेथ एलिस, नॉर्थलैंड ग्रैंड ड्यूक की दूसरी वारिस। एक कुलीन व्यक्ति के रूप में निश्चित रूप से मैंने उनके बारे में सुना है। अगर मुझे नहीं पता होता तो मुझे मौके पर ही मार दिया जा सकता था। लेकिन नॉर्थलैंड आइस लॉर्ड्स के साथ क्या है? यह एक उपनाम है जो मैंने सोचा है। ये कैसा है? क्या यह उपयुक्त है? मेरी नी, मरे ग्रीन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। सहज रूप से निक ब्राउन के पूरे परिवार को शाप देना और बधाई देना चाहते थे, लेकिन ये याद करते हुए कि सामने वाला व्यक्ति उनका रिश्तेदार था, उन्होंने खुद को रोक लिया। दुनिया इतनी खूबसूरत है, फिर भी मैं इतना चिड़चिड़ा हूँ। यह अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। हालांकि निक ब्राउन को ये कहते हुए सुनकर और फिर हॉल में घूम रहे विदेशी छात्रों को देखकर मरे ग्रीन को स्थिति समझ में आ गई। एलिजाबेथ एलिस 17 वर्षीय वर्तमान नॉर्थलैंड शासक है, जो नॉर्थलैंड गार्जियन एलिस ग्रैंड ड्यूक की पोती है। वह ड्यूक की दूसरी वारिस है, लेकिन मरे ग्रीन के विपरीत, जो अर्ल का दूसरा वारिस है, उसके पिता पहले वारिस हैं और उसके पिता की केवल एक बेटी है। इसलिए एलिजाबेथ एलिस निश्चित रूप से ड्यूक एलिस का पद प्राप्त करेगी और एक बहुत ही दुर्लभ महिला ग्रैंड ड्यूक बन जाएगी। कुलीनों के वर्चस्व वाली इस दुनिया में उत्तराधिकार के अधिकार वाली कुलीन महिलाएं निश्चित रूप से अपने परिवार के बाहर विवाह नहीं करेंगी। इसके बजाय वे अपने परिवार में ही विवाह करने के लिए पुरुषों को चुनेंगी। और महिला कुलीनों की विशेष प्रकृति के कारण विवाह करने वाले पुरुषों को कुछ कुलीन अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। ग्रैंड ड्यूक के क्षेत्रीय अधिकारों को साझा करने के प्रलोभन ने पूरे राज्य से उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आकर्षित किया जो कुलीन उत्तराधिकारी नहीं थे, और उन्हें नॉर्थलैंड में लाया गया जहां वे अपने जीवन के उत्तरार्ध के लिए जुआ खेलने के लिए तैयार थे। ये समझकर मरे ग्रीन ने फलों के रस का एक घूंट लिया, निक ब्राउन के प्रति अपने गुस्से को दबा लिया, फिर अपने नितंबों को पीछे कर लिया। उसका पूरा शरीर चौड़े सोफे से लिपट गया। लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना? अरे, इसका क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम हार मानने और आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो। मुरे, हम आत्मसमर्पण नहीं कर सकते। अगर हम हार गए और इन घृणित बाहरी लोगों को हमारे नॉर्थलैंड आइस लॉर्ड्स को तोड़ने दिया, तो हमारे नॉर्थलैंड का क्या चेहरा बचेगा? पूरा लैनिया साम्राज्य हमारा मजाक उड़ाएगा, निक ब्राउन ने दांत पीसते हुए मरे ग्रीन से कहा। लेकिन मरे ग्रीन ने धीरे से जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन देखो, मेरे छोटे हाथ और पैर होने के कारण महारानी मुझे कैसे पसंद कर सकती हैं? ये तो युद्ध शुरू होने से पहले ही मरना है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हार मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार गए हैं। मरे ग्रीन ने कुछ देर रुककर निक ब्राउन से धीमी आवाज में कहा, महारानी एलिजाबेथ का भावी पति एक सच्चा पुरुष होना चाहिए, जो महारानी के लिए ऊपर पूरे आकाश को संभालने में सक्षम हो और नीचे पूरे नॉर्थलैंड की रक्षा कर सके। और सच्चा पुरुष शब्द सिर्फ आपके लिए ही बना है, निक ब्राउन। हे, कहा निक ब्राउन, जो आमतौर पर मोटी चमड़ी वाले थे, को मरे ग्रीन की चापलूसी थोड़ी भारी लगी और वह खुद को थोड़ा हल्का महसूस करने से नहीं रोक पाए। लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाते, मरे ग्रीन ने सीधे बीच में टोक दिया और बोलना जारी रखा। अपने मजबूत शरीर को देखो, लंबा और ताकतवर, तुम्हारी बड़ी बड़ी बाइसेप्स, शक्तिशाली और मजबूत, तुम्हारा फुर्तीला दिमाग, साधन संपन्न और बुद्धिमान, एक योद्धा का शरीर, एक जादूगर की बुद्धि, ये सब तुम्हारे अंदर पूरी तरह से समाहित है। तुम सृष्टिकर्ता की उत्कृष्ट कृति हो। उफ, खांसी खांसी, पुरुषों में एक पुरुष, सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ। तो निक, मैं स्वेच्छा से हार स्वीकार करता हूँ, इसलिए नहीं कि वे मजबूती से आ रहे हैं, अन्यथा मैं उनसे मरते दम तक लड़ता, उन्हें हमारे नॉर्थलैंड आइस लॉर्ड्स पर हाथ नहीं डालने देता। ये हमारे नॉर्थलैंड में आपके अस्तित्व के कारण है कि मैं स्वेच्छा से पीछे हटता हूँ, आपके लिए जगह बनाता हूँ जो तबाही मचाने वाला है और आपको रोक नहीं रहा है। जाओ निक, तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए एक युद्ध का मैदान बना है, तुम्हारा वीर पथ। जाओ उन्हें हराओ, मैं तुम्हें पीछे से अपना आशीर्वाद भेजूंगा, तुम्हारी विजयी वापसी की कामना करता हूँ। निक ब्राउन को, जो लड़ने की भावना से भरा हुआ था, हॉल के केंद्र की ओर बढ़ते हुए देखकर मरे ग्रीन अपना जूस गटक लिया तथा अभी अभी की घृणा की भावना को निगल लिया। फिर उसने अपने कपड़े थोड़े ठीक किए, शराब का गिलास उठाया और शालीनता से एक सुंदर कुलीन युवती के पास गया। मेरी सुंदर महिला, क्या मैं आपको नृत्य के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ? निक ब्राउन गर्व से खड़े होकर अपने वीरतापूर्ण मार्ग पर चल पड़े, लेकिन आधे रास्ते में ही उनकी बुद्धि, जो मरे ग्रीन के बहकावे में आकर भटक गई थी, अचानक वापस आ गई और उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। हाँ, ये सही नहीं है, मुझे वास्तव में धोखा दिया गया था। वह घृणित बच्चा, मैंने पहले क्यों नहीं देखा कि उसकी जीभ इतनी चिकनी थी? वह लगभग मेरे जितना ही अच्छा है। लेकिन अब जब वह ये कदम उठा ही चुका है, तो यदि वह पीछे हटने का फैसला करता है, तो निश्चित रूप से 4 साल तक मरे ग्रीन उसका मजाक उड़ाएंगे और फिर उन 4 सालों में उसे क्या मजा आएगा। तो निक ब्राउन की नजर एक युवा रईस पर पड़ी जो मार्च क्लेमेंस के साथ बातचीत कर रहा था। ये तय हो गया है, यह आप हैं, हेडन मार्गरी। हेडन मार्गरी उत्तर के 4 महान मार्क्विस में से एक, मार्क्विस मार्गरी के तीसरे पुत्र तथा उपस्थित लोगों में लिवे एलिस के बाद दूसरे स्थान पर उपनाम वाले पुरुष। अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हुए निक ब्राउन ने अपने शब्दों को थोड़ा व्यवस्थित किया, फिर धीरे से आगे बढ़ा, हेडन मार्गरी के पास गया और फुसफुसाया, क्षमा करें सज्जनों, मैं व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूं, क्या मैं हेडन से निजी तौर पर बात कर सकता हूं? हेडन मार्गरी निक ब्राउन के अचानक व्यवधान से थोड़ा हैरान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मार्च क्लेमेंस से माफी मांगी और निक ब्राउन के पीछे हॉल के किनारे तक चले गए। हेडन, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मामला क्या है? हेडन मार्गरी के सवाल का सामना करते हुए निक ब्राउन की अभिव्यक्ति बदल गई, एक दुखद भाव प्रकट हुआ जिसने हेडन मार्गरी के दिल की धड़कन बढ़ा दी। वह मुझसे पैसे उधार तो नहीं मांगेगा, है ना? उधार दूं या ना दूं? अगर उधार दूं तो ब्याज दर क्या होगी? अगर उधार न दूं तो मैं उसे कैसे मना करूं? ये वाकई दुविधा की स्थिति है। इससे पहले कि हेडन मार्गरी कोई जवाब दे पाते, निक ब्राउन ने भारी स्वर में कहा, हेडन, हमारा उत्तर वर्तमान में एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है जिसका मुकाबला केवल हम ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हम असफल रहे तो पूरा उत्तर लैनिय साम्राज्य का उपहास का पात्र बन जाएगा, या यहां तक कि अन्य स्थानों के लिए एक जागीरदार बन जाएगा। क्या? निक ब्राउन की बातें सुनकर हेडन मार्गरी का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और वह आश्चर्य से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका, जिससे पास में बातचीत कर रहे कई सहपाठी कुछ असमंजस के साथ उन दोनों की ओर देखने लगे। हेडन मार्गरी को भी पता था कि वह अपना संयम खो चुका है, लेकिन एक कुलीन व्यक्ति होने के नाते उसने तुरंत अपने आप को संभाला, अपने आसपास के परेशान सहपाठियों से माफी मांगी और फिर निक ब्राउन को एकांत कोने में ले गया। कौन सी चुनौती? हेडन मार्गरी को गंभीर होते देख निक ब्राउन का दिल खुशी से भर गया। ये जानते हुए कि उन्होंने उसका ध्यान आकर्षित कर लिया है, इसलिए उन्होंने सीधे बात की। एलिस अकादमी में आने वाले उन बाहरी लोगों के इरादे नेक नहीं हैं, वे सभी एलिजाबेथ एलिस के लिए यहाँ हैं। वे उसके पति बनना चाहते हैं और उत्तर के शासन में हिस्सा लेना चाहते हैं। अगर वे सफल हो गए तो हमारे भविष्य के दिन अच्छे नहीं होंगे। हम्फ। हेडन मार्गरी का चेहरा स्याह पड़ गया, क्योंकि उसे स्थिति का एहसास हो गया था और उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने अपनी उग्र दृष्टि उन बाहरी लोगों की ओर घुमा दी। एलिजाबेथ पहले से ही 17 साल की थी, इसलिए उसके दूसरे आधे को चुनने का मामला अब प्रमुख रईसों के बीच कोई रहस्य नहीं था। मार्क्विस के बेटे के रूप में हेडन मार्गरी ने इस मामले को निक ब्राउन से भी अधिक गहराई से समझा। जब एलिजाबेथ वयस्क होने वाली थी, ड्यूक एलिस ने 4 महान मार्क्विस से मिलने के लिए लोगों को भेजा और ड्यूक द्वारा भेजे गए व्यक्ति ने हेडन मार्गरी की बहुत विस्तृत जाँच की। परीक्षा से पहले उसने अपने पिता से पूछा कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला, केवल अच्छा प्रदर्शन करने और अपना सर्वश्रेष्ठ पक्ष दिखाने का सख्त आदेश मिला। परीक्षा के कुछ समय बाद उनके आमतौर पर सख्त पिता ने मुस्कुराते हुए उन्हें बताया कि उन्हें एलिजाबेथ के पति के उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया गया है, जो शीर्ष 5 में स्थान पर है। ये समाचार पाकर वह बहुत खुश हुआ। कौन एलिजाबेथ का पति नहीं बनना चाहेगा? एक सुंदरी के साथ आराम करना और दुनिया पर अधिकार करना। कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता, खासकर जब वह उम्मीदवारों में से एक बन गया हो और पहले से ही इस लक्ष्य के करीब हो। अब निक ब्राउन उसे बता रहे थे कि लोगों का एक बड़ा समूह उत्तर की ओर आया है, जो उसकी एलिजाबेथ को छीनना चाहता है, उसका गौरव और धन छीनना चाहता है और उत्तर के ड्यूक के रूप में उसका पद छीनना चाहता है। इससे वह क्रोधित क्यों ना हो गया? हेडन मार्गरी को देखते हुए, जिसका गुस्सा लगभग चरम पर था, निक ब्राउन ने अपनी जीभ चटकाई। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्यों, उसने मन ही मन सोचा कि उसे वाकई सही व्यक्ति मिल गया है। युद्ध में ऐसे जनरल के साथ वह पीछे से मुश्किल पानी में आराम से मछली पकड़ सकता था। हेडन, आज तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुमने मुझे याद न दिलाया होता तो मैं इस मामले पर ध्यान ही नहीं देता। ये लोग वास्तव में उत्तर में आकर एलिजाबेथ को पाने की हिम्मत करते हैं, वे वास्तव में नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, एलिजाबेथ उत्तर की हमारी बर्फ कमल है, जो बेहद पवित्र है। ये बाहरी लोग उसे अपवित्र करना चाहते हैं, हम उत्तर के लोग कभी सहमत नहीं होंगे, निक ब्राउन ने आक्रोश से कहा, फिर एक भयावह मुस्कान प्रकट की और हेडन मार्गरी के कान में फुसफुसाया, मेरे पास इन लोगों को उनकी ही दवा का स्वाद चखाने का एक छोटा सा विचार है। निक ब्राउन के विचार को समझते ही हेडन मार्गरी की आंखें चमक उठी और वह जोर से हंस पड़ा, बहुत बढ़िया विचार है। हम अलग हो जाएंगे, अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे और आधे घंटे में हमला शुरू कर देंगे। आज रात मैं इन बाहरी लोगों को सीधा चलने और क्षैतिज रूप से बाहर निकलने के लिए कहूंगा। अल्पविराम, 3 डांस पार्टनर बुक किए गए हैं, आज रात के लिए इतना ही काफी होगा। जब निक ब्राउन काम में व्यस्त थे, मरे ग्रीन भी व्यस्त थे। एक कुलीन भोज, एक सामाजिक स्वर्ग, उसी उम्र की खूबसूरत कुलीन लड़कियों से भरा हुआ, लंबी और सेक्सी, शुद्ध और सुंदर, जीवंत और प्यारी। इससे मरे ग्रीन के पास विकल्पों की भरमार हो गई। उसने अपने पिछले जीवन की हीनता और विवेक को त्याग दिया और युवा हार्मोन का अनुसरण करते हुए पहल की। उसका वर्तमान रूप सुंदर और आकर्षक था और हर निमंत्रण स्वीकार किया गया। अगर उसने अंत में खुद को संयमित नहीं किया होता तो उसके पास 3 से अधिक नृत्य साथी होते। ओह, वे वहां किस लिए इकट्ठे हुए हैं? इससे पहले मरे ग्रीन का ध्यान कुलीन लड़कियों पर केंद्रित था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना ध्यान हटाया और हॉल का निरीक्षण किया, उन्होंने पाया कि विदेशी छात्र उत्तर से आए पुरुष छात्रों से घिरे हुए थे। मरे ग्रीन उत्सुकता से आगे बढ़े और फुर्तीले कदमों से घेरे में घुस गए। उन्होंने देखा कि लिवे एलिस बीच में अजीब भाव के साथ खड़े थे, जबकि विदेशी छात्र और निक ब्राउन दोनों तरफ खड़े थे। उनके चेहरे पर कुलीन मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखें एक दूसरे पर जमी हुई थीं। दृश्य बारूद की गंध से भरा हुआ था। मेरे भोज में आप सभी का स्वागत है। मैं लिवे एलिस आशा करता हूँ कि सभी की शाम सुखद रहे। हाहाहा, लिवी एलिस, हमें इतना बढ़िया भोज देने के लिए धन्यवाद। आज रात हमारी शाम निश्चित रूप से सुखद होगी। आइए हम अपने गिलास उठाएं और लिवी एलिस का धन्यवाद करें। हेडन मार्गरी ने अपना वाइन ग्लास उठाया और उसकी बातें सुनकर उनके आसपास के सभी लोगों ने अपने गिलास उठाए और लिवी एलिस को टोस्ट किया। टोस्ट पीने वाले लिवी एलिस ने आह भरी और सकल से बाहर जाने के लिए मुड़ गए। हर कोई आसन तमाशे की ओर आकर्षित था और किसी ने लिवी एलिस पर ध्यान नहीं दिया, जो एक सफल योजनाकार की मुस्कान के साथ, चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ अकेले चले गए। लड़ो, बड़ी लहरें रेत को बहा ले जाती हैं और सच्चा सोना आग से नहीं डरता। अब तुम्हारे प्रदर्शन के लिए मंच तैयार हो गया है, देखते हैं तुम क्या शानदार प्रदर्शन कर सकते हो। राजकुमारी का भावी पति सबसे बेहतरीन होना चाहिए। ये सोचते हुए लिवी एलिस की नज़र मरे ग्रीन पर गई, जो संकुचित आंखों से शो देख रहा था। किसी को घूरते हुए महसूस करते हुए मरे ग्रीन का दिल हिल गया और उसने अपना सिर लिवी एलिस की नज़र से मिलाया। यह महसूस करते हुए कि लिवी एलिस उसे घूर रही थी, मरे ग्रीन को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर उत्साह को देखना जारी रखा। इस लड़के की मानसिक शक्ति निश्चित रूप से हम सभी में सबसे मजबूत है। एक सप्ताह से भी कम समय में उसने पहले ही इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया है। क्या प्रतिभा है, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह बैटल लॉ बन सकता है। अगर वह बैटल लॉ बन सकता है तो एक अच्छा मौका है। लिवी एलिस ने भोज ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की ओर देखा, अपनी दाहिनी तर्जनी को आगे बढ़ाया, उसे दो बार घुमाया और फिर उसे तेजी से ऊपर की ओर खींचा। पहले से धीमा भोज संगीत तुरंत बढ़ गया और ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर ने अपने हाथों को जोर से हिलाया, जिससे संगीत और भी अधिक भावपूर्ण हो गया। जोशीले नृत्य संगीत ने उनके कानों को भर दिया, जिससे गतिरोध में खड़े दोनों समूह और भी अधिक उत्साहित हो गए। हेडन मार्गरी ने अपने बगल में खड़े कुछ लोगों से नजरें मिलाई और आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ गए। विपरीत दिशा में शहर से बाहर से आए छात्र पीछे नहीं रह सकते थे, उनमें से तीन एक साथ आगे बढ़े, सभी पहले बनना चाहते थे। हाहाहा, कुछ भटके हुए लोग नॉर्थलैंड में हमारी राजकुमारी एलिजाबेथ पर दावा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है, एक काल्पनिक सपना। शहर से बाहर के छात्रों का मजाक उड़ाए जाने के बाद उनके चेहरे बदल गए, लेकिन पहले कदम उठाने वाले तीनों में से किसी ने भी पीछे हटने का फैसला नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने खुद को संभाला और आगे बढ़ते रहे। मैं हेडन मार्गरी, मार्क्विस मार्गरी का बेटा हूँ, मैं आपसे परिचय करना चाहता हूँ। हेडन मार्गरी ने अपने दाहिने हाथ में शराब का गिलास उठाया, उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे और उन्होंने युद्ध की पहली गोली चलाई। मालोन रीड, सदलैंड के ड्यूक रीड के पोते। बेनेट लिटन, रॉयल कैपिटल के ड्यूक लिटन के पुत्र। गुस्ताव पियस, रॉयल कैपिटल के ड्यूक पियस के पुत्र। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये तीनों झुकने को तैयार नहीं थे, उनकी हैसियत और पद एक जैसे थे। अगर कोई झुकता या पीछे हटता तो यह उनके कुलीन उपनाम पर दाग होता। हमम, ये मेधावी रईस भी इस मस्ती में शामिल हो रहे हैं। तभी किसी अज्ञात स्रोत से आवाज आई। ये सुनकर रॉयल कैपिटल से बेनेट लिटन और गुस्ताव पियस के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया, लेकिन फिर भी उन्होंने हेडन मार्गरी के साथ गिलास टकराए और अपने गिलासों में भरी शराब को एक ही घूंट में पी गए। पूरे लान्यस साम्राज्य को पांच भागों में विभाजित किया जा सकता है, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और मध्य। राजा केंद्रीय शाही राजधानी में तैनात है, जो राज्य का स्तंभ है। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर के चार ग्रैंड ड्यूक राज्य के चारों ओर की रक्षा करते हैं और प्रसिद्ध सीमा रक्षक हैं। नॉर्थलैंड में सभी कुलीन लोग राजा के अधीन होते हैं और उसके जागीरदार होते हैं। हालांकि मार्क्विस और ड्यूक के बीच कुलीन पद में केवल लेवल एक का अंतर होता है, लेकिन वास्तव में बहुत बड़ी असमानता होती है। नॉर्थलैंड ग्रैंड ड्यूक न केवल अपने क्षेत्र से कर एकत्र कर सकता है, बल्कि पूरे नॉर्थलैंड के करों को राजा के साथ साझा भी कर सकता है। इसके अलावा युद्ध के समय में नॉर्थलैंड ग्रैंड ड्यूक के पास स्वचालित रूप से पूरे नॉर्थलैंड के सैन्य बलों, भर्ती अधिकारों और युद्ध कमान प्राधिकरण पर नियंत्रण होता है। इसलिए पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर के चार ग्रैंड ड्यूक कर संग्रह पर सीमाओं और युद्ध की घोषणा करने के अधिकार के अलावा एक रियासत के शासक से बहुत अलग नहीं है। चार ग्रैंड ड्यूक्स की स्थिति महामहिम राजा के बाद दूसरे स्थान पर है, वे पूरे लैनिस साम्राज्य में केवल चार निर्वासित ड्यूक हैं। निर्वासित रईसों के अलावा लैनिस साम्राज्य में मेधावी रईस भी हैं। इन मेधावी रईसों के पास कोई क्षेत्र नहीं है, केवल वार्षिकियां हैं और उनकी कुलीन उपाधियां वंशानुगत नहीं हो सकती हैं। पदच्युत किए गए कुलीनों की नज़र में ये मेधावी कुलीन लोग महामहिम राजा द्वारा पाले गए उच्च स्तरीय गुंडे हैं। जब तक वे पर्याप्त रूप से मजबूत हैं, उन्हें पदच्युत किया जा सकता है। इसलिए एक निर्वासित बैरन भी एक मेधावी ड्यूक को नीची नज़र से देखता है। और अब इन मेधावी रईसों के वंशज वास्तव में राजकुमारी एलिजाबेथ का उपयोग करके नॉर्थलैंड ग्रैंड ड्यूक के पति बनने की कोशिश कर रहे हैं, नॉर्थलैंड ग्रैंड ड्यूक की शक्ति का अतिक्रमण कर रहे हैं और उन पर हावी हो रहे हैं। इससे आसपास के नॉर्थलैंड के रईस वंशज बेहद क्रोधित हो गए। जब हेडन मार्गरी ने शराब पीना समाप्त किया और नीचे उतरा, तो अगला व्यक्ति शराब का गिलास थामे आगे बढ़ा। नॉर्थलैंड के छात्र पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो गए ताकि वे विरोधी पक्ष को कुछ बातें बता सकें। बोरिंग, ये फिर से शराब पीने जैसा है। हम, वे डांस म्यूजिक बजाना शुरू कर रहे हैं। मुझे उस खूबसूरत महिला के साथ डांस करने जाना है जिसके साथ मैंने योजना बनाई थी। लोगों के दुख आपस में जुड़े नहीं होते, इसलिए मरे ग्रीन न तो नॉर्थलैंड के इन छात्रों के गुस्से को समझ पाए और न ही वे कुलीन पद के प्रति उनके जुनून को समझ पाए। मरे ग्रीन के लिए अब जीवन पहले से ही काफी अच्छा था। उसके पास खाने पीने की चीजें थीं, वह जितनी चाहे उतनी खूबसूरत महिलाओं के साथ योजना बना सकता था और वह स्वतंत्र और बेपरवाह था। एक पेड़ के लिए पूरा जंगल क्यों छोड़ना? चूंकि स्वर्ग ने उसे एक और मौका दिया है, इसलिए उसे इस बार इसका पूरा आनंद उठाना चाहिए तथा कोई पछतावा नहीं छोड़ना चाहिए ताकि यह जीवन व्यर्थ न चला जाए। बेरिल, क्या तुम अब मेरे साथ नृत्य कर सकती हो? मरे ग्रीन एक कुलीन युवती के पास गया। उसकी आंखें लाल खुबानी की तरह थीं, भौहें विलो पत्ती की तरह, होंठ चेरी लाल, त्वचा बर्फ की तरह और एक लंबा कद। उसने चांदी के छींटों से सजी एक फिट काली पोशाक पहनी थी जो रोशनी में रात में सितारों की तरह चमक रही थी। मरे ग्रीन का हाथ अपनी ओर बढ़ता देख बेरिल पीटर दीप्तिमान मुस्कान के साथ हॉल के सबसे जीवंत हिस्से की ओर देखने लगी और फिर चंचल भाव से बोली, हे मरे, वे सभी राजकुमारी एलिजाबेथ के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आप एक अर्ल के बेटे हैं, आप क्यों नहीं जाते? जब कोई महिला किसी पुरुष के सामने किसी अन्य महिला के बारे में चर्चा करती है तो वह संभवतः ईर्ष्यालु होती है। अपने पिछले जीवन में मरे ग्रीन रोमांस विशेषज्ञ नहीं थे, वह सिर्फ 996 कर्मचारी थे। लेकिन अकेलेपन से बचने के लिए उन्होंने रोमांस गाइड का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। इन तकनीकों और विधियों को अच्छी तरह से एकीकृत करने के बाद वह समृद्ध सैद्धांतिक ज्ञान वाले एकल व्यक्ति बन गए, क्योंकि रोमांस तकनीक का उपयोग करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का होना आवश्यक है। बेरिल पीटर के सवाल का सामना करते हुए मरे ग्रीन को अचानक एहसास हुआ कि उसने पहले जो रोमांस तकनीकें सीखी थी उनका आखिरकार इस्तेमाल हो गया। इसलिए उसने सीधे बेरिल पीटर की आंखों में देखा और धीरे से कहा, मैं सिर्फ एक छोटे अर्ल का बेटा हूँ। राजकुमारी आसमान में चमकते चांद की तरह है, सराहनीय लेकिन अप्राप्य। मैं उसका सम्मान करूंगा लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा दिल बहुत छोटा है और सिर्फ एक ही व्यक्ति को संभाल सकता है और वह तुम हो, मेरी प्यारी बेरिल। पफ्फट, मरे, तुम सच में एक चिकनी चुपड़ी बात करने वाले बदमाश हो, लेकिन मुझे ये पसंद है। बेरिल पीटर ने अपना मुंह ढक लिया और खिलखिलाकर हंसने लगी, फिर अपना शुद्ध सफेद हाथ बढ़ाकर उसे धीरे से मरे ग्रीन की हथेली पर रख दिया और मरे ग्रीन के नृत्य निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। मरे ग्रीन ने बेरिल पीटर के नाजुक हाथ को डांस फ्लोर पर ले जाकर बेरिल पीटर की ओर मुंह किया और दोनों ने संगीत की धुन पर एक साथ नृत्य किया। क्या आप चाहते हैं कि मैं राजकुमारी एलिजाबेथ का पीछा करूं? अगले दिन मरे ग्रीन, जो ग्रीन फैमिली मैनर में पहुंचे थे, आश्चर्य में चिल्लाए जबकि उनके सामने राइन ग्रीन ने शांति से सिर हिलाया। ये सही है छोटे मरे, यह एक पारिवारिक कार्य है। ये कैसा बेतुका काम है बड़े भाई? तुम्हें नहीं पता, राजकुमारी एलिजाबेथ का पीछा करने वाले लोग उत्तरी क्षेत्र से लेकर दक्षिण तक फैले हुए हो सकते हैं। कल रात एक छोटी सी बहस के लिए लोगों के एक समूह ने शराब पीने की होड़ लगा दी। राजकुमारी एलिजाबेथ ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और 40 से 50 युवा रईसों को भोज कक्ष में फैला दिया गया और वापस उनके छात्रावासों में ले जाया गया। वे शायद अब भी बेहोश हैं। मरे ग्रीन सोफे पर बैठे अपने कमजोर पैरों को पकड़ते हुए डर के मारे बोल रहे थे। ये सुनकर राइन ग्रीन ने जवाब दिया, क्या मैजिक अकादमी में प्रतियोगिता इतनी ही सरल है? सिर्फ शराब पीने की प्रतियोगिता? क्या आपको पता है कि वॉरियर अकादमी में क्या हुआ था? क्या 36 लोग घायल हुए हैं, 6 गंभीर रूप से घायल हैं, 1 का हाथ कट गया है तथा 2 अभी भी बेहोश हैं। आज शनिवार है, अवकाश का दिन है तथा हताहतों की संख्या और भी अधिक हो सकती है। मरे ग्रीन, ओह ठीक है, वारिया अकादमी की तुलना में जहां मामूली सी असहमति पर झगड़े शुरू हो जाते हैं, कल की शराब की दावत वाकई एक छोटी सी बात थी। लेकिन वे क्या कर सकते थे? जादू की लड़ाई में शामिल हों? वे सभी नए छात्र थे, उन्हें अभी तक ध्यान विधि में महारत हासिल नहीं थी, तो जादू कहां से आएगा? योद्धाओं के विपरीत, जो बस तलवार पकड़ लेते थे और काटना शुरू कर देते थे, सरल, सुविधाजनक और सीधा। यह मामला इतना खतरनाक है और फिर भी आप चाहते हैं कि मैं चला जाऊं? विवरण सफलता निर्धारित करते हैं, दृष्टिकोण सब कुछ निर्धारित करता है। राइन ग्रीन ने ये 12 शब्द कहे, फिर चिंतित भाव से मरे ग्रीन की ओर देखा। सच कहूं तो राइन ग्रीन भी नहीं चाहता था कि उसका छोटा भाई इस खामोश युद्ध में शामिल हो, लेकिन दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य क्षेत्रों के रईसों ने अपने वंशजों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा था, फिर भी उनके अपने नॉर्थलैंड के लोग भाग नहीं ले रहे थे। सम्मानित नॉर्थलैंड ग्रैंड ड्यूक क्या सोचेंगे? क्या उनकी पोती पर्याप्त सुंदर नहीं थी, या नॉर्थलैंड ग्रैंड ड्यूक की शक्ति पर्याप्त आकर्षक नहीं थी, या क्या उन्हें लगा कि उनकी महान तलवार तेज नहीं थी और उनके मुंह के चोट नहीं पहुंचाते थे? जहां तक ग्रीन परिवार का प्रश्न है, राइन ग्रीन को छोड़कर, जिनके पास उत्तराधिकार का अधिकार था, केवल मरे ग्रीन ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो प्रतियोगिता की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। मरे ग्रीन उन 12 शब्दों को सुनकर अवाक रह गए। तो ये सिर्फ दिखावा था, लेकिन औपचारिकता बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। मैंने आज आपको यहाँ बुलाया है, इसके अलावा आपको प्रशिक्षित करने और खुद को मजबूत बनाने के लिए भी। भविष्य में आपको अपनी सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए और दूसरों द्वारा घात लगाकर हमला नहीं करना चाहिए। हाँ बड़े भाई, इसे इतना डरावना मत बनाओ, ठीक है? मेरा दिल पहले से ही कांप रहा है। क्या ये शादी के लिए मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का एक उन्नत संस्करण नहीं है? मैं प्रवेश करते ही आत्मसमर्पण कर सकता हूँ। हे, केवल मृत लोग ही सबसे अच्छे प्रतिद्वंद्वी होते हैं। राइन ग्रीन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने मरे ग्रीन की ओर अत्यंत कठोर चेहरे से देखा और धीमी आवाज में कहा, हमारा ग्रीन परिवार, जो आम लोगों से है, ने 200 से अधिक वर्षों तक लगातार युद्ध और रक्तपात सहा है। अर्ल के पद के लिए अनगिनत परिवार के बुजुर्गों और वंशजों की मृत्यु हो गई और कुल मिलाकर कम से कम 1,00,000 सैनिकों की बलि दी गई। एक जनरल की सफलता 10,000 की हड्डियों पर बनी होती है। अब ये राज्य के 4 ग्रैंड ड्यूक स्तर की शक्तियों के बीच एक शक्ति संघर्ष है। भले ही जो शादी करता है वह बहुत अधिक शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता है, ग्रैंड ड्यूक के प्रभाव के लिए यहां तक कि थोड़ा सा हेरफेर भी लाभ के रूप में हो सकता है, जो एक ग्रीन फैमिली का पुनर्निर्माण कर सकता है। इस प्रतियोगिता में आपको कई खतरों का सामना करना पड़ेगा, हत्या, जहर, सभी प्रकार के चरम उपाय। आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए, लापरवाह नहीं होना चाहिए। मैं आपकी लाश नहीं लेना चाहता। बेशक अगर दुर्भाग्यवश तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो बेहतर होगा कि तुम हत्यारे के बारे में जानकारी छोड़ दो ताकि मैं तुम्हारा बदला ले सकूं। मरे ग्रीन राइन ग्रीन की बातें सुनकर थोड़ा अचंभित रह गए। यह क्या था? महल की साजिश का एक शानदार संस्करण, 3,000 प्रतिभाशाली पुरुषों की कहानी जो खुले और गुप्त संघर्षों के माध्यम से एक महिला के स्नेह के लिए होड़ कर रहे हैं, एक महिला उन्मुख नायक के बदला लेने वाले उपन्यास की तरह। ओह, हालांकि मैं अभी भी इसे ठीक से समझ नहीं पाया हूं, लेकिन मैं इस मामले के सभी पहलुओं को समझता हूं। हो सकता है कि मैं दूसरों से प्रतिस्पर्धा में आगे न निकल पाऊं, लेकिन बेहतर होगा कि वे मुझे उकसाए नहीं, वरना हम में से किसी के लिए भी यह आसान नहीं होगा। ये सबसे अच्छा है कि आप इसे समझें। आपके लिए पिताजी की अपेक्षाएं सरल हैं, अपना दृष्टिकोण व्यक्त करें, सुरक्षित रहें और तब तक जीवित रहें जब तक राजकुमारी एलिजाबेथ किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चुन लेती जिससे वह संतुष्ट हो। राइन ग्रीन ने सिर हिलाया, मरे ग्रीन के रवैये में आए बदलाव से बहुत खुश। अगर वह पहले की तरह बेपरवाह रहता तो शायद वह इस खामोश युद्ध का पहला शिकार होता। मरे ग्रीन को देखकर, जो गहरी सोच में डूबा हुआ था, उसका सुंदर चेहरा और सुडौल शरीर, ईमानदारी से कहूं तो वह बहुत अच्छा दिख रहा था। अन्य प्रतियोगियों की तुलना में उसकी जन्मजात स्थितियां बहुत अच्छी थीं। हालांकि मरे ग्रीन बचपन से ही एक गर्मजोशी भरे पारिवारिक माहौल में पले बड़े थे, जिसके कारण वे सौम्य, दयालु और बिना किसी बुरी मंशा के थे। ज्यादा से ज्यादा वे चुपके से थोड़ी शराब पीते थे। ये सब फायदे थे, लेकिन अब ये घातक कमजोरियां बन सकती हैं। इसलिए आज उन्होंने मरे ग्रीन को इस जागीर में बुलाया था, पहले तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए और दूसरे उसे अस्थायी रूप से खतरे से दूर रखने के लिए। तभी मरे ग्रीन, जैसे कुछ सोच रहे हों, अचानक ऊपर देखते हुए पीले चेहरे के साथ पूछते हुए, बड़े भाई, क्या होगा अगर एलिजाबेथ समलैंगिक है और महिलाओं को पसंद करती है? फिर इस संघर्ष का क्या मतलब है? तो फिर आप क्रॉस ड्रेसिंग शुरू कर दीजिए। राइन ग्रीन ने ये वाक्य बोलते हुए अपने दांत पीस लिए, फिर मरे ग्रीन को पकड़ लिया, उसे अभ्यास के लिए प्रशिक्षण मैदान में ले जाने की तैयारी कर रहा था। क्या समय था और वह अभी भी ऐसी बकवास के बारे में सोच रहा था। आह बड़े भाई, धीरे चलो, मेरे पैर कमजोर हैं, मैं नहीं चल सकता। ये सुनकर राइन ग्रीन के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने हैरानी से मरे ग्रीन को देखा, दोनों हाथों से उसका कॉलर पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। पूछताछ की तरह मरे ग्रीन की आंखों में गौर से देखने लगा। हम कल रात भोज में तुमने क्या किया? क्या तुम शायद खुद को नियंत्रित करने में असफल रही और अपनी पवित्रता खो बैठी? आपको ये जानना चाहिए कि भले ही राइन ग्रीन 18 साल का था और 2 साल से वयस्क था, लेकिन परिवार के पहले वारिस के रूप में उसके लिए जरूरतें असाधारण रूप से सख्त थीं। अपनी महान महत्वाकांक्षाओं के साथ उसने अभी भी अपनी पवित्रता बनाए रखी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अंतर्मुखी और ईमानदार छोटा भाई स्कूल में 1 हफ्ते से भी कम समय में इतनी जल्दी गिर जाएगा। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ गंभीर प्रशिक्षण की जरूरत थी। खांसी, कल रात के भोज में अधिकांश लड़के शराब पीने की प्रतियोगिता में शामिल हो गए। पूरे भोज में लड़कों से ज्यादा लड़कियां थीं और गुणवत्ता वाले लड़के भी कम थे। मैं सबसे उत्कृष्ट था। मूल रूप से मैंने केवल 3 लड़कियों के साथ नृत्य करने की योजना बनाई थी, लेकिन कल मैंने 13 लड़कियों के साथ नृत्य किया, संगीत शुरू होने से लेकर भोज समाप्त होने तक। अंत में निक ब्राउन, जो लगभग नशे में था, ने मुझे छात्रावास में वापस लाने में मदद की। आज सुबह अगर आपने मुझे यहाँ नहीं बुलाया होता तो शायद मैं अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ आराम कर रहा होता। बड़े भाई, क्या हम आज प्रशिक्षण छोड़ दें और मुझे आराम करने दें? मरे ग्रीन ने पिछली रात जो कुछ हुआ उसके बारे में बात करते हुए कहा। उसकी आंखें भर आईं। सुंदर महिलाओं के साथ नृत्य पहला आनंद था, दूसरा खुशी थी, तीसरा उदासीनता थी, चौथा आश्चर्य था, पांचवां दिखावा था और छठा दर्द था। अंत में मरे ग्रीन एक दर्दनाक मानवीय नृत्य मशीन बन गया। हालांकि मरे ग्रीन वास्तव में उन लड़कियों को मना करना चाहते थे जिन्होंने उन्हें नृत्य करने के लिए सक्रिय रूप से आमंत्रित किया था, लेकिन उनके अनुरोधों का सामना करते हुए मरे ग्रीन को अंततः स्वयं ही दर्द सहना पड़ा। दयनीय मरे ग्रीन को देखकर राइन ग्रीन भी कुछ अवाक रह गए। उनका दिल नरम पड़ गया और उन्होंने आखिरकार कहा, आज आराम का दिन है, कल हम शिकार पर जाएंगे।